أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم اپنے آج کے اس دن کا، اس وقت کا بہترین استعمال کریں. کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو ہمارے سننے، سمجھنے، پھر اس پہ غور کرنے اور اس کے اوپر تدبر کرنے کے راستے کی رکاوٹ ہو. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2017، اس کے ڈے 25، 25ویں دن کا آغاز کریں گے. اور آج کا ہمارا گول سورۃ یاسین کی آیت نمبر 22 سے لے کر پارے کینٹ تک ہے. سورۃ یاسین ہم پچھلے حصے کے آخر میں شروع کر چکے. چند باتیں اس کی لے کر ہم آج کے اس پارے کو دیکھیں گے. آج کے اس پورے پارے کے اندر جس چیز پہ بہت بات ہوگی وہ ہے ہدایت کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ ہے. جب دل صحت مند اور سلامت ہوتا ہے تو چاہے دور سے کوئی بات سن لے، اس کے دل پر اثر کرتی ہے. اور جب دل سلامت نہیں ہوتا تو چاہے پاس بیٹھا شخص ہدایت کی دعوت دے، انسان اس کی طلب نہیں رکھتا. سب سے پہلے اس میں حبیب کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں. سورۃ یاسین اصل میں تعصب کی دیواروں کو توڑنے والی سورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں بھیجے گئے، اس ماحول میں تعصب یہ تھا کہ جب ہمارے باپ دادا کو کوئی بات نہیں پتہ چلی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورت کے بالکل آغاز میں دے دیا کہ جب لوگ اپنے ارد گرد دیواریں ہی کھڑی کر لیں گے تو پھر ان کو ہدایت کیسے ملے گی. پھر دوسری چیز جو ہم نے ابھی تک دیکھی وہ کیا ہے کہ قرآن پاک حکمتوں والی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہوئی تھی. زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے دو راستے آتے ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. ایسے وقت میں یہ کتاب ہمیں عقلی ہدایت بھی دیتی ہے اور عملی ہدایت بھی دیتی ہے. عقلی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی، عملی ہدایت کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا. کتاب کو رسول سے یا رسول کو کتاب سے الگ کریں گے تو ہدایت سے دور ہو جائیں گے. دلوں کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ایک چیز کو لینے لگتے ہیں اور دوسری چیز کو چھوڑنے لگتے ہیں. फिर इसी तरह से हमने इस सूरत के शुरू के हिस्से में एक आयत देखी थी कि इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमु व आसारहुम, आयत नंबर 12 है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लेक्चर सुना होगा, नहीं सुना तो सुनने वाली लिस्ट में उसको डाल दिया होगा। लेकिन हकीकत यह है कि आज मैं और आप इस दुनिया में जो जो कर रहे हैं ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, और ये ज़मीन आपके मेरे प्रिंट लेती है, और ये एक दिन में नहीं होता। इसके लिए इंसान को बहुत पहले से कोशिश करनी पड़ती है। एक वक्त आ जाता है कि इंसान उसके अंदर फिर अपने आप को मसरूफ़ कर लेता है। दूसरी बात ये पता चलती है कि अच्छे काम के आगाज़ से ही अच्छा अंजाम शुरू हो जाता है। आप यहाँ कुरान सीखने आए, खामोशी से बैठ के सुन रहे हैं, अमल के इरादे हैं, एक एक सोच आपकी आपके लिए माकद्दमु वासारहुम की सूरत में महफूज होती जा रही है। ज़रूरत है इस बात की कि हम शऊर पैदा करें। हमारी गाड़ियों के पहिए ही कहीं ना कहीं से घूमे होंगे, अल्लाह ने वहाँ भी निशान लगा दिए कि ये गाड़ी ये टायर हिदायत की तलब में घूमा था। क़यामत के दिन अल्लाह ताला चाहेगा तो ये ज़मीन के टुकड़े गवाही देंगे। एक और चीज़ पता चलती है कि ज़मीन मुर्दा है, बज़ाहर मुर्दा लिखती है लेकिन सब कुछ नोट कर रही है। इसकी दलील देखिए कि आज साइंस ने हमें इस चीज़ की गवाही दिलवा दी कि हर चीज़ घूम रही है, और ये ज़मीन बहुत तेज़ी से घूम रही है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। लेकिन क्या आपको मुझे उसकी हरकत दिखती है? महसूस भी नहीं होती, और अल्लाह ना करे कभी महसूस हो। तो जब हरकत है और हमें नज़र ही नहीं आ रही, तो हो सकता है कि समात भी हो, ये ज़मीन ये टुकड़े हमारी बातें सुन भी रहे हों और रिकॉर्ड भी हो रहे हों और हमें पता ही नहीं। और साइंसदानों ने अब इस पर रिसर्च शुरू कर दी हुई है कि कायनात में जो कुछ हम आप कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, सिर्फ अब वो बटन ढूंढ रहे हैं कि जिससे इसको रीप्ले कर सके। तो कोई काम करें तो शौक से करें, कहीं भी आप जाएं, कुछ भी करें, उस वक्त आपका वहाँ जाना और वहाँ बैठना किसी भी असर से खाली नहीं होता। अब आगे जो किस्सा है वो एक बस्ती का था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस से पता चलता है कि इस शख्स का नाम हबीब था। क्या उसकी तड़प थी, क्या तलब थी, असल में आज पूरा पारा इसी के गिर्द घूमेगा। आइए तर्जमा पढ़कर फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون। आखिर क्यों ना मैं उस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। इसको हाईलाइट कर लें। असल ये है वो बात जो आपको मुझे नेकी करने पे माइल करेगी। असल बात तो ये है कि जब भी कभी कोई आपको किसी नेकी से महरूम करना चाहे या किसी गुना से माला माल करने की ख्वाहिश करे, तो ये आयत आपके मेरे लिए एक हुज्जत है। उसको तो उस वक्त उन्होंने किसी और चीज़ की बात की थी, उन्होंने उसके ऊपर तनकीद की थी, लेकिन आप और मैं अपनी ज़िंदगी के हर अमल पर जो अल्लाह के हुक्म पर हम करने लगें, इस बात को कानून बना लें कि जिसने पैदा किया और जिसको जाकर मुंह दिखाना है उसकी बात ना मानूं तो क्या होगा। यकीन कीजिए नमाज पढ़नी भी आसान हो जाएगी, कुरान पढ़ना भी, हिजाब करना भी, सब कुछ करना। और असल में इस जुमले में इस बात का यकीन है कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। क्यों? कि उसने मुझको पैदा किया। रजुलन मोमिन की बात है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इस शख्स का अपना दिल जब हिदायत पे जमा हुआ था तो ये बोला। तो यहाँ ये नोट कीजिए, ईमान गूंगा नहीं होता, ईमान चुप नहीं रहता। जब आपके अपने दिल में अल्लाह की मार्फत आ जाती है, वमा लिय लाअबुदु लाअबुदु, ये कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ कहते हैं जिसका खाओ उसके गुण गाओ, जिसकी बात सुनो उसके, जिससे जो आपका मुहसिन है तुम उसके एहसानों का बदला दो। तो यहाँ चंद सेकंड के लिए आप और मैं सोचें, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी का ये असूल बनाया हुआ है? क्या मेरे अंदर ये चीज़ मौजूद है कि जब मुझे अल्लाह की कोई कॉल आ जाए, जब अल्लाह का कोई हुक्म आ जाए तो फिर मैं उसके चल पड़ूँ? फिर दूसरी बात देखिए जो उसने कही, और वो क्या है कि उसकी तरफ पलटना है। ये पलटने का एहसास जो है ना, यही असल में इंसान को सीधा रखता है। हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना उनकी शिफात मेरे किसी काम आ सकती है और ना वो मुझे छुड़ा ही सकते हैं। यहाँ से आपको उसके अकीदे की दूसरी तह खुलती भी दिखती है। और यकीन कीजिए अगर काम करना है किसी चीज़ पे तो अपने ईमान पे कीजिए। ईमान दिखता नहीं है लेकिन उसका असर दिखता है। मसलन आप देखिए कि आपको गाड़ी दिखती है लेकिन गाड़ी की टंकी में जो पेट्रोल या गैस डाली वो नहीं दिखती, लेकिन पेट्रोल है तो गाड़ी चल रही है, गैस है तो गाड़ी चल रही है। अच्छा पेट्रोल है गाड़ी अच्छी चल रही है, अगर जरा सा कचरे वाला आ गया तो वो झटके देगी। असल चीज जो मेरे आपसे नेकियां करवाएगी वो ईमान है। हम अपने डे वन से यानी इंट्रोडक्टरी लेक्चर से ये बात करते आ रहे हैं कि ईमान नेकियां करवाने वाला एक मोटिव है। आप किसी भी जगह अपने अमल में कोई कमी देखें या अपने इर्द गिर्द वालों में, जाकर ईमान को चेक करें। मसलन आप देखिए बाज़ लोगों को सर में दर्द होता है, आप सर दबाते हैं फिर भी नहीं ठीक होता, क्योंकि वजह सर नहीं था, स्टमक था, स्टमक अपसेट है, पेट में गैस हो गई, कुछ भी हुआ, तो वो सोर्स ढूंढना चाहिए जो बीमारी पैदा करता है। ईमान खालिस है, जुरत भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और सबसे बड़ी बात के खैर ख्वाही भी आएगी। अल्लाह ताला इसकी इस बात से हमें ये बात दिखा रहा है, और वो क्या है, फरमाया अगर मैं तुम्हारी इस बात पे काम करूं, हालांकि अगर खुदा रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना इनकी शिफात मेरे किसी काम आ सकती है और ना वो मुझे छुड़ा सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं तो सरी गुमराही में मुबतला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। असल देखिए ये बात है, जब खुद बंदा ईमान पर आता है ना तो उसको दूसरों की फिक्र लग जाती है। हिदायत अंदर गई, हिदायत जुबान पे आ गई, अपनी हिदायत मुकम्मल हुई, दूसरों की हिदायत की फिक्र लग गई। खैर ख्वाही का सिंबल है ईमान के पौधे से जो चीज़ फूटती है वो खैर ख्वाही है। सबसे पहले आप अपने खैर ख्वाहते हैं, क्यों मैं इस जिस्म को आग में जलवाऊं, क्यों थोड़े से फन और प्लेयर के लिए मैं अब आखिरत में अपने आप को परेशान करूं। इसके बाद करीब वालों की, उसके बाद और एक वक्त आता है कि फिर आप इस्लाह की कोशिशों में लग जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हबीब ने जीते जी भी लोगों की खैरख्वाही की और मरने के बाद भी, कैसे कि उन लोगों ने उसको कत्ल कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसके दिल में उनके लिए क्या तमन्नाएं थी। आइए इस वाक्य को पढ़ते हैं। आखिरकार इन लोगों ने इसे कत्ल कर दिया और इस शख्स से कह दिया क्या कि दाखिल हो जन्नत में। इधर जिस्म से खून का कतरा जमीन पर गिरा, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। शहीद के साथ ऐसा ही होता है। हदीस में आता है कि जब कोई अल्लाह के रास्ते में जान देता है तो उसको फौरन जन्नत दिखाई जाती है, और शहीद के लिए कब्र का अजाब भी नहीं है, वो अपना बरज़ख का वक्त जो है वो कब्र वो जन्नत में गुजार देता है। उन्होंने दुनिया की राहें बंद की, अल्लाह ने जन्नत के रास्ते खोल दिए। असल बात है कि इंसान ये देखे कि मैं किसके रास्ते में निकला हूँ। और फिर आप देखिए कि उस वक्त उसने क्या कहा, उसने कहा काश मेरी कौम को ये मालूम होता मेरे रब ने किस चीज की बदौलत मेरी मगफरत फरमा दी। ये होती खैर ख्वाही। कोई और रूह होती तो कहती कि हाँ हाँ दिखाओ अल्लाह, इनको मजा तो आए, जरा देखो मेरा कितना अच्छा अंजाम हुआ, और इनको जरा इनका भी दिखा दो जहन्नम का। नहीं, क्या चाह रहा है, तड़प क्या है, काश मेरी कौम जानती, या लैता कौमी यालमून। जरा इस जुमले पे गौर तो करें अपने ऊपर ले, या लैता कौमी यालमून, ए काश मेरी कौम इल्म हासिल करती, ए काश मेरा खानदान इल्म हासिल करता, ए काश मेरे रिश्तेदार इल्म हासिल करते। कि अंदर दिल की हर धड़कन के साथ से समझ आता है क्या ये तड़प है, और अगर तड़प है तो सच बताए फिर उसकी कोशिश क्या है। हम तो दुनिया के नफे देने के लिए हरीस होते हैं, हम तो अपने प्यारों को तकलीफों से बचाने के लिए तड़प रहे होते हैं। क्या हम वाकई भक्टू गलत काम करते देखकर लोगों को हम रोकते हैं? नहीं। और सबसे बड़ी बात कि इनको अल्लाह ये बता दे कि वजालनी मिनल मुखरमीन, अल्लाह ने मुझे बाइज्जत लोगों में शामिल कर दिया। ये क्यों बताओ, ताकि मेरी इस कौम को ये पता तो चल जाए कि जो चीज मुझे अल्लाह की जन्नतों के काबिल कर गई तुम अभी भी उसको पा सकते हो। अल्लाह अकबर कबीर कबीरा। आप देखिए कि ये तड़प और ये तलब ही असल में रासुल माल है मुबल्लिग का। पीछे रजुलन मोमिन की बात थी, दावत की बात थी, यहां उस दावत का अल्टीमेट रिजल्ट है कि लोग बुरे अंजाम से बच जाएं। ठीक है, उस वक्त उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, ये सदा बस सहरा सहरा वाली बात है, सहरा में एक पुकार लगाने वाली बात है, कोई नहीं समझ रहा। लेकिन अब कितने लोग सूरत यासीन पढ़ते हैं, कितने ये वाक्या पढ़ते हैं, कितनों को इस शख्स की ये का इखलास और इसकी ये बातें हिदायत की तरफ ले आती हैं। तो याद रखिए, जिंदगी में आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना भी दे, बाद में अल्लाह ताला आपके लिए ये सब कुछ देगा। और ये फितरत की पुकार है कि एक इंसान अपने रब को पूजे, और जब अपने अकीदे का इजहार किया, इकरार किया, फिर उस पर जम गए, इसी का नाम तो है इस्तकामत फिर दीन। जरूरत पैदा करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों के उसके दिल में ईमान होता है लेकिन उसके इजहार से डरते हैं। फिर दूसरी बात है कि पहले मुबल्लिग था, तबलीग की, और जो वो बेहतरीन अमल है, वमन अहसन कौला मिम्मन दअ इला अल्लाह, हम आगे जाकर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बन गया, और फिर शहीद फी सबीलिल्लाह बनकर जन्नत में चला गया। यही है असल में करने का काम। सबसे पहले आपके अपने दिल खुलें, फिर आप दूसरों की तड़प रखें, खैर ख्वाही फूटे, और उसके बाद फिर अल्लाह आगे से आगे ले जाए। लोगों ने तो जान ली, अल्लाह ने हाथों हाथ लिया। असल बात यह है कि अल्लाह हमें इखलाक और खैर ख्वाही का मजमू बना दे। हम जब कुंद छुरियों के साथ तबलीग करते हैं और लोगों को ताने दे देकर उनके दिल तोड़ देते हैं तो बात नहीं बनती। अब वो लोग तो बेचारे उनको मार कर समझे कि बहुत कामयाब हो गए, लेकिन देखिए पीछे उनका इंजाम क्या हुआ। वमान जलना ला कौमी ही मिम्बा दी मिन जुन दिम मिनसमा, इसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा। हमें लश्कर भेजने की कोई हाजत भी ना थी, बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब बुझ कर रह गए। ज्यादा कुछ नहीं करना, जो खैर के खजाने भेजने थे भेज दिए। तड़पने वाला, पुकारने वाला, ख्वाहिश रखने वाला जो था वो जब दुनिया से गया, इसके बाद इनके पास सिर्फ एक धमाके की आवाज आई और वो खामेदोन बुझ कर रह गए। आग के बुझने को खमूद कहते हैं। और ये देखिए कि यहाँ ये बात करके अल्लाह ताला ने इस बात की भी गवाही दे दी कि असल में हर चीज का एक वक्त होता है। जिस वक्त इंसान उस चीज का फायदा ले लेता है, अल्लाह ताला उसको जाविदा कर देता है। और दूसरी बात इससे क्या पता चलती है, अल्लाह की मुखालफत में उठने वाली आवाजों को अल्लाह यूं दबा देता है, सिर्फ एक धमाका सब बुझ कर रह गए। कभी भी इस्लाम और कुरान और रसूल के खिलाफ किसी की आवाज़ सुनकर घबराया ना करें। वो ज़ात है ऊपर, वो जानती है, उसको दिफा करना आता है, उसको पता है मैंने कब किसको किस तरह करना है। अल्लाह जब किसी को पकड़ना चाहता है तो सिर्फ आवाज़ से मार देता है। अब ये मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, इसको बढ़ाएं बढ़ाएं, एकदम ये माइक जो है ये आवाज़ दे, चिरचिर करे और एकदम चीखों में बदल जाए, कितने अपने कानों पर उंगलियाँ रख लेंगे। अल्लाह को क्या लगे, किसी को आग से मरवा दिया, किसी को पानी से मरवा दिया, सिर्फ सही हाथ, सही का लफ्ज है, चीख को कहते हैं। तो जब लोग तोहयानियों में भरते हैं ना और इस्लाम और अल्लाह के कानून के खिलाफ आवाज लगाते हैं, अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं है। असल बात यह है कि तुम अपनी फिक्र करो। अल्लाह ताला ने यहाँ यही बात करके फरमाया, या हसरतन अली बात, हाय अफसोस बंदों के हाल पर, मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़ियून, जो भी रसूल इनके पास आया इसका वो मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके और इसके बाद वो फिर कभी इनकी तरफ पलट कर ना आए। इन सब को एक रोज जरूर हमारे सामने हाजिर किया जाएगा। अल्लाह अकबर, अफसोस को महसूस कीजिए। और उस शख्स ने, हबीब ने जरा सी देर की कुर्बानी दी, क्यामत तक के लिए मा कद्दमु आसारहुम की सूरत में निशानी बन के चिस्मा हो गई। आपके मेरे पास बहुत वक्त नहीं होता किसी जगह अपनी नेकी की मोहर सब्त करने का। बस एक इंस्टेंटली नेकी होती है, कर दें तो हो जाती है, ना करें तो फिर उसका सबक, उसका मौका खत्म हो जाता है। तो खुलासा क्या है यहां तक इस बात का कि खैर ख्वाही पैदा करें। खैर ख्वाही कहाँ से पैदा होती है? तौहीद से, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का मुकाम। खुद को गुलाम समझें, गुलाम खुद को आका समझने लगे तो क्या होगा, फिर वो कभी भी रब की बात नहीं बनेगा। बंदे बनकर मांगते रहिए, अल्लाह आपके लिए सारे रास्ते आसान कर देगा। और दूसरी बात ये पता चली कि लिए दिए नहीं रहो, दूसरों के लिए तड़पो, दूसरों के लिए जियो। जब गुलामी करनी ही है तो अल्लाह की क्यों ना कर लें, उससे अच्छा आका में कौन मिलेगा। लेकिन ये गुलामी आसान कब होती है? जब दिल शुक्र के जज्बों से भरे होते हैं, दिल में शुक्र आ जाता है, अल्लाह का बंदा बनना बहुत आसान हो जाता है। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे। अब जो बात कहनी थी ना सूरह यासीन में कह दी है, असल यही पैगाम है इसका। आगे सारी सूरत में निशानियां है कि अल्लाह की इबादत क्यों करूं। वमा अली अला अबुदुल लजी फतरनी। हमारे कल्चर में सूरह यासीन बहुत पढ़ी जाती है। कुरान पाक खोलें लोगों के घरों से लेकर तो उसमें ये सफ़े कसरत इस्तेमाल की वजह से थोड़े से मुतासिर हुए होते हैं, लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर इस पर गौर करके तो देखें, एक एक लफ्ज़ आप जो पढ़ेंगे ना, ये निशानियों का है। कहीं कायनात की निशानियाँ, कहीं तारीख की निशानियाँ, कहीं लोगों की तरफ अल्लाह ताला के जो पैगाम लेकर गए थे रसूल उनकी बात की निशानियाँ। कायनात की निशानियों में से पहली चीज़ फरमाया, इन लोगों के लिए बेजान ज़मीन एक निशानी है, हमने इसको ज़िंदगी बख्शी और इससे गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं, हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसके अंदर से चश्मे फोड़ निकाले ताकि ये इसके फल खाएं, ये सब कुछ इनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं। लेकिन बात क्या है, फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? अफला यशकुरून। चाट बनाते हैं कभी, फ्रूट चाट किसने नहीं खाई? कभी उसके खूबसूरत रंगों को देखकर आपने मैंने इन आयतों पर गौर किया? अब आप सोचिए, अनार सुर्ख की बजाय ग्रे कलर का होता, क्या वो दाने मुंह में डालते? अंगूर हल्के अंगूरी रंग की बजाय कोई बहुत ही मटियाले रंग का होता, मुंह में डालते? फिर इतनी वैरायटी और सारे ही फल एक रंग के होते, ये किसने बनाया और किसके लिए बनाया? वैरायटी, खूबसूरती, एक खट्टा, एक मीठा, एक थोड़ा सा मीठा, एक ज्यादा मीठा, एक नमकीन, ताकि सबको मिलाकर जब खाओ तो तुम्हें टेस्ट आए। यही कायनात का असूल है। अल्लाह ने जैसे फलों के मुख्तलिफ जायके टेस्ट बनाए ना, इसी तरह इंसानों के भी बनाए हैं। असल बात है कि जब सब मिल जाते हैं, जब सारे अपनी कोशिशों को एक बर्तन में डालने लगते हैं, तो इंसानियत के लिए एक बेहतरीन मुरब्बा तैयार होता है और जिसकी वजह से अल्लाह ताला की रहमत और बरकत भी आती है। फिर दूसरी बात है कि ये चश्मों की बात है, और सब कुछ कहकर कहा तुमने किया है, ये तुमने बनाया है। सच बताइए, आज अपने घर में जब खाना बनाएं इस आयत पे गौर कीजिएगा। एक एक चीज, एक छोटी सी चीज ना हम परेशान हो जाते हैं, खाना नहीं पक सकता, फला चीज नहीं है। आप सोचिए अगर वो होती ही ना, और किसने ये सोचा था कि ये सारा कॉम्बिनेशन जमा करेंगे तो हमारा सालन तैयार होगा। प्याज, लहसुन, अदरक, जो कुछ भी हमारे खानों में डलता है, आप देखिए ये किसने बनाया। आप कभी इमेजिन तो कीजिए, सब कड़वा होता, सब मीठा होता, सब खट्टा होता, क्या बनता? लेकिन असल बात है फला यशकुरून, फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो ज़ात जिसने जुमला इकसाम के जोड़े पैदा किए, खा वो ज़मीन की नबातात में से हों या खुद इनकी अपनी जिन्स यानी नौ इंसानी में से या इन अशिया में से जिनको ये जानते नहीं। एक और निशानी जो हर रोज देखते हैं और उससे गुजरते भी हैं, लेकिन बात यह है कि गौर कम करते हैं, और वो क्या है? वायतुलहुमुल्लैल। इनके लिए एक और निशानी रात है, हम इसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। हरकत में बरकत है, हर चीज असल में इधर से उधर, उधर से इधर जा रही है। ये जबरदस्त तलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है। और चांद, और चांद उसके लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि इनसे गुजरता हुआ वो खजूर की सूखी शाख के मानित हो जाता है। ना सूरज के बस में ये है कि वो चांद को जा पकड़े और ना रात दिन पर सबकत ले जाती है, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। आज ये बातें हम पढ़ते हैं कुरान में, जिन लोगों ने इन चीज़ों को साइंटिफिकली डिस्कवर किया था वो हैरान हो जाते हैं कि 1400 साल से पहले से यह आयात मौजूद है। कुरान को डिस्कवर जितना लोगों ने किया सूरह यासीन की आयात को देखकर किया। आप देखिए कि हर चीज़ हरकत में, ये आज साइंस बताती है, अल्लाह ने हर चीज़ पहले से खोल के बता दी। दूसरी बात है कि हर चीज़ घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है, चांद भी घूम रहा है, ज़मीन भी घूम रही है, आसमान भी घूम रहा है। अगर मैं आपको इनके फिगर्स लिखाऊँ तो आप हैरान हो जाए, अकल गुम हो जाती है इंसान की, कितनी तेजी से घूम रहे। यानी सूरज एक मिनट में शायद 150 मील तय करता है, एक मिनट में। आप और मैं 150 मील तय करें तो कम से कम 4 घंटे लगेंगे। कोई आवाज आ रही है, कोई धमाके हो रहे हैं, जनजनाटे हो रहे हैं, यानी आप देखें तो इस पूरी कायनात में हर वक्त काम हो रहा है। दुनिया में आप किसी भी इंडस्ट्रियल जोन में जाइए, आवाजें आ रही हैं, छक 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 छक, कहीं चक्की चल रही है कि बॉयलर फप 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 फट रहे हैं, आवाजें आ रही हैं। आप किसी मैकेनिक शॉप के पास, ठक 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 गाड़ियों की मरम्मत है। कहीं भी जाके देखिए, काम होता है तो शोर होता है, कायनात में शोर नहीं है। असल ये पैगाम है इस हिस्से का, खामोशी से काम करो, बोलो नहीं, शोर नहीं मचाओ, अपनी तारीफें ना करो, मैं ना करो, अपनी शोहरत के इश्तेहार ना दो, इतना किया, इतनों को फायदा हुआ, इतने आ रहे हैं, इतने जा, बस चुपके से काम करो। फिर मिसाल देती हूँ कि आप किसी कमरे में जाएं, इसी रूम में आए तो अंदर खूब आवाजें आ रही हो, शोरोगुल, जी जा, कीलो काल, आप सोचेंगे अंदर कोई पार्टी हो रही है, और आप अंदर आए स्टोर से और पिन ड्रॉप साइलेंट, और हर बंदा सर उड़ाल के बस कुछ लिख रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि कुछ काम हो रहा है। जब हमारे बच्चे काम में मसरूफ होते हैं वो शोर नहीं करते, ये शोर कब करते हैं हमारे पीछे, कब जब फिरते हैं, जब इनको काम नहीं देते, तो जो काम कर रहे होते हैं ना वो ज्यादा नहीं बोलते। और बड़ों ने बड़ी पते की बात कही है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जिनको बरसना है वो खामोशी से बरस जाते हैं। कभी कभी तो बड़ी शोर वाली बारिश होती है ना, लेकिन यहाँ आके मैंने इस चीज को इंजॉय किया है, क्योंकि पाकिस्तान में इसी तरह से बारिश होती है, बैठे तो एकदम छन छन शुरू। नॉर्वे में बहुत बारिश होती, लेकिन बारिश में खड़े हो तो नहीं पता चलता, जब तक भीगे ना आवाज नहीं होती, किसी किस्म की आवाज मुझे नहीं सुनाई दी, होती होगी तो होती हो, कभी गरज की आवाज नहीं सुनी, कभी चमक की नहीं। वही रब नॉर्वे में बारिश भेजता है, वही इधर भेजता है, वही पाकिस्तान में भेजता है। पाकिस्तान में हमेशा देखते थे कि बारिश होने से पहले आंधी चलती थी, गर्मियों में खास तौर पे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो, और जूं ही खूब आंधी पर चली तो एकदम बारिश हुई तो मिट्टी बैठ जाती थी। मैंने ये मंजर दुनिया में आज तक तो कहीं नहीं देखा। क्यों? ये एक रब है, वो आपको मुझे सिखा रहा है कि काम करने का तरीका सीखो, किसी जगह किस इलाके में किस तरीके से किस स्ट्रेटेजी से कहाँ बात करनी, किस किस्म के लोगों के साथ कोई बड़केदार बातें करनी है, किस में जोश वाली तकरीरें करनी है, किस में स्मूथ बात करनी है, किस में पेनिट्रेटिंग बात करनी है। ये असल में ये वो हबीब की वो तबलीग पे ही थीम चल रहा है, हिदायत की तलब, हिदायत देना चाहते हो, हिदायत हिदायत, तो फिर उसके लिए तरीके भी सीखो। और ये भी सिखाता है कि हमारा भी कोई एक माहवर होना चाहिए। हम तो कभी जाके हज और उमरे की सूरत में तवाफ करते हैं, और उस चक्कर में क्या कहते हैं हम, पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की, तीसरे, वो दुआओं के चक्करों में खो जाते हैं, कितने बड़े थे। हालांकि नहीं, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज और उमरे से ये सीख के आने की जरूरत है कि अल्लाह को अपना मरकज और महवर बनाओ। वमा ली अला अबुदुल्लजी, इसी जुमले को पूरे पारे में पढ़ लें, वमा ली अला अबुदुल्लजी, मैं क्यों ना करूं उसकी इबादत, जब उसने मुझे पैदा किया, जब उसने मुझे सब कुछ दिया, और जो मेरी जिंदगी के अंधेरों को रोशनियों में बदलता है। इसमें एक और निशानी है, क्योंकि निशानियों पर गौर ही तो करना है आपने, मैंने, और तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है समझने वाली। ये सूरत गौर व फिक्र वाली सूरत है, तदब्बुर वाली सूरत है। तो आप देखिए कि इससे एक और सबक की बात है कि जब हर रात के बाद सुबह आती है तो मेरे गमों के बाद भी खुशी आएगी, मेरी बीमारियों के बाद सेहत आएगी, मेरी बेचैनियों को भी अल्लाह चैन में बदल देगा। और आप देखिए कि कायनात में ये जो एक छोटा सा सेल है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, आप देखेंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जोड़ा बनता है, इससे अल्लाह के एक होने की भी बात है। आगे हम पढ़ेंगे कि हर चीज इस कायनात में जोड़ों की शक्ल में है, सिर्फ एक हस्ती अकेली है और वो अल्लाह की है, अल्लाह ताला हमें उसी के साथ जोड़ दे। क्या चीज है जो आपको मुझे एक अल्लाह का बनाती है? इखलास। ममाली अला अबुदुल्लजी, जब आप एक अल्लाह पे नजरें लगाते हैं ना, आप मुखलिस कौन है, जरा साहब देखें, खालिद, और किसी से नहीं मांगना, बस आप देखिए, शौहर पैसा दे ना दे, फिर मांगते उसी से ही है। कोई कहता है किसी और से मांग लो, हम कहते क्यों मांगो, क्यों बेइज्जती करो, शादी से पहले माँ बाप से मांगते। इखलास क्या है कि आपकी नजर किसी तरफ उठे ही ना, मिलना है तो इधर से मिलना है, थोड़ा मिलना है तो मिलना है, ज्यादा मिलना है तो मिलना है। इससे आप देखेंगे कि एक हैरत अंगेज किस्म की आपकी जिंदगी में और आपकी तबीयत में तब्दीली आएगी। अब एक और चीज पे गौर करेंगे, और वो क्या है? कश्तियां। कभी बैठे पानी की कश्तियों में, बहरी जहाजों में? अब थोड़ा सा इस पे गौर करके देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ कहा। वायत लहुमुल्लैल के बाद फरमाया, वश्शम्स वल क़मर लि मुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। जी, आयत नंबर 41, व आयत लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून। इनके लिए ये भी एक निशानी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया और फिर इनके लिए वैसी ही कश्तियां और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं, फिर इनके लिए वैसी ही कश्तियां और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला ना हो और किसी तरह ये ना बचाए जा सके। बस हमारी रहमत ही जो इन्हें पार लगाती और एक वक्त खास तक जिंदगी से फायदा उठाने का मौका देती है। देखिए, एक सुई समंदर क्या दरिया के पानी पे रखें अंदर डूब जाएगी। स्विमिंग पूल में जाके आजमा लीजिए, पानी का एक टब भरें, टब में पानी भरें, उसमें रखें, एक सुई डूब जाती है, इतना बड़ा जहाज क्यों नहीं डूबता। ये सोच थी जो अर्शमीदस ने दी थी, अगर आपने उसका नाम सुना है, जिससे उसने बहरी जहाज बहरी सफर को डिस्कवर किया था कि एक छोटी सी सुई क्यों डूबती है, बड़ा जहाज क्यों नहीं डूबता। और एक और चीज आपने फील किया होगी, छोटी कश्ती में बैठे तो हचकोले हिलते जुलते, बड़े जहाज में बैठे अंदर जाके पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। और जितना बड़ा जहाज है उतना सिक्योर है। आप फिजाओं में जाकर देखिए, छोटे जहाज खतरनाक होते हैं, फोकर अक्सर ही गिरते हैं, अल्लाह बचा के रखे। छोटी फ्लाइट्स में खतरा ज्यादा है, बड़ा जहाज आप कहते हैं नहीं, जहाज जम्बू जेट है ये ठीक होगा, ये अल्लाह ने सिखाया है। कभी इन डोलती हुई कश्तियों पे बैठकर सोचा तुमने, कौन तुम्हें पानी में डूबने से बचाता है? और चाहे तो किसी को डुबो दे और किसी को तार दे। नूह की कश्ती टूटी फूटी बिल्कुल बेसिक लेवल की बच गई और बड़ा सा टाइटैनिक डूब गया। किसने डुबोया टाइटैनिक को? उनके उस तकब्बुर ने डुबोया कि इसको तो गॉड भी नहीं गिरा सकता। उनके लफ्ज रिकॉर्ड पे मौजूद है, जब वो जहाज चला था तो उनके बनाने चलाने वालों ने दावा किया था कि इतना सिक्योर जहाज है कि इसको तो गॉड भी नहीं डुबो सकता। गॉड ने ऐसा डुबोया, कई सालों के बाद डिस्कवर कराया और वो लोगों के लिए इबरत बन गया। और जरा ये बात भी तो सोचिए कि उनकी फरियाद सुनने वाला भी कोई ना रहा। अल्लाह ना करे कि कोई बहरी जहाज डूबे, चीखें चिल्लाएं पुकारें कहाँ तक जाती है आवाज़, है कोई दूर दूर जो उनकी आवाज़ सुने? और जब बहरी जब हवाई जहाज गिरते हैं, कौन सुनता उनकी पुकारों को? वो सारे गैजेट और वो सारी मशीनें और रिकॉर्डर भी जल के राख हो जाते हैं जिसमें ये आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। आपकी मेरी बस ये औकात है, जीने चाहें तो कैसे जिए, जाने का वक्त आ जाए कैसे ले जाए, सब कुछ उसका है। करो क्या, एक खास वक्त तक की जिंदगी से फायदा उठाओ। आज के इस पूरे थीम पारे के अंदर जो थीम हमने कवर करना है ना, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, और अरबी में कह दे अल आन, अभी राइट अवे। आप और मैं अगर अपनी जिंदगी के हर दिन को ये सोचें, यही है वो एक लम्हा जिसमें जन्नत की तरफ जा सकती हूँ, जहन्नुम से बच सकती हूँ, यही है वो लम्हा जिसमें मैं अपने हिस्से का काम कर सकती हूँ, तो फिर जो हमारा टाइम वेस्टर है ना, तसाहुल टालम मटोल डिलेइंग टैक्टिस, अच्छा अभी कर लेती हूँ, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा जरा बड़ी हो लो, अच्छा जरा बच्चे बड़े हो जाएं, अच्छा वो हो जाए, लोग क्या कहते हैं, बस अभी नहीं, जरा अच्छे हालात हो जाएंगे ना फिर हम खूब नेकियां करेंगे, अभी नहीं दे सकते सदका खिरात, जरा अच्छा सदका हो जाएगा पैसा फिर देंगे, अभी नहीं नमाज का वक्त, अभी मसरूफ बहुत है, जरा से फारिग हो जाए फिर नमाजों के लिए दुकान बंद कर दिया करेंगे। याद रखिए, नहीं, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जिंदगी का असूल बनाए। यही अल्लाह ताला आपको मुझे इस आयत में मैसेज दे रहे हैं कि ये है वो लम्हा जो जिंदगी से फायदा उठाने के लिए तुम्हें दिया जाता है। फिर फरमाइन लोगों से जब कहा जाता है कि बच्चों इस इंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुजर चुका है, शायद कि तुम पर रहम किया जाए, तो ये सुनी अनसुनी कर देते हैं। जरा सा गौर करें, जब दिल में हिदायत की तलब नहीं होती ना, तो ना माँ की बात अच्छी लगती है, ना बीवी की, ना शोहर की, ना बाप की। क्यों? हम कहते हैं छोड़े, आप तो ऐसे, आप हर वक्त बोलती रहती हैं, आप तो हर वक्त कहती हैं, आपको तो कोई और काम ही नहीं है। इनके सामने इनके रब की आयात में से जो आयत भी आती है, ये इसकी तरफ मुंह भी नहीं करते, इल्तफात ही नहीं करते, यानी जस्ट इग्नोरेंस, जस्ट इग्नोर करते दिखते हैं, और इनको फिक्र ही नहीं होती किसी चीज की। और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुमको अता किया है, इसमें से कुछ अल्लाह की राह में भी खर्च करो, तो ये लोग जिन्होंने कुफर किया है ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं, क्या हम इनको खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो। क्या पता चला, ना करने के 100 बहाने। जिसको कोई काम नहीं करना होता ना, एक उजर से निकालें तो दूसरे में, दूसरे उजर को दूर करें तो तीसरे में। ये सारी बातें ये बताती हैं कि अभी जिंदगी की इस दौलत की कदर नहीं आई। देखिए अब सिर्फ 8, 9, 10 दिन रह गए हमारे इस रमजान में, अल्लाह को पता कितने दिन है, चला गया ना। ये जाता हुआ रमजान हमें क्या पैगाम दे रहा है कि एक दिन आखिरी दिन आएगा रोजे का, पैगाम क्या है? इसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी जा रही है। देखिए अमूमन रमजान के 3 अशरे हैं ना, 10 10 दिन का या 10 10 और 9 दिन का। हमारी जिंदगी के भी 3 ही अशरे हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। कोई बचपन में उठा लिया जाता है तो पहले अशरे में चला गया, किसी को जवानी में उठाया गया तो दूसरे अशरे में चला गया, और किसी को अगर बुढ़ापे का मिला तो कोई जरूरी नहीं कि पूरा अशरा हो, कोई जवानी के बुढ़ापे के शुरू में, कोई आखिर में, कोई इधर उधर जाता है। आपके मेरे हाथ में क्या है? ऐलान आज इस वक्त, जब जिंदगी में नेकी का मौका है, खुद से कहें ये है वो मौका जिस पे मुझे अल्लाह ने बख्शना है, ये है वो नेकी जिसको छोड़ूंगी तो मैं महरूम रह जाऊंगी। और जब कोई गुनाह का मौका आए तो सोचे ये है वो गुनाह जिसने मुझे जहन्नुम में भिगवाना है, ये है वो जिसने मुझे कंथरा पे रोकना है, ये है वो चीज जिसने मुझे एक डुबकी तो जहन्नुम की लगवानी है। इस तरह अपने से बात करें, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह फायदा होगा। इसीलिए आगे क्यामत की निशानी का जिक्र है। ये लोग कहते हैं ये क्यामत की धमकी आखिर कब पूरी होगी? बताओ अगर तुम सच्चे हो, यानी सवाल लेने वाले से, सवाल पूछने वाले से अब खुद ही जवाब मांगने लगे, यानी ऐसे कि कोई इम्तिहान लेने के जो आए उसी का इम्तिहान लेने लग जाए, तैयारी है कोई नहीं, इरादा है कोई नहीं, नीयत है कोई नहीं, और कहते क्या है, अच्छा जरा बताओ ये कब आएगी और ये कैसे होगी? दरअसल ये जिस चीज की राह तक रहे हैं वो बस एक धमाका है, सूर की तरफ इशारा है, जो यकायक इन्हें इस हालत में धर लेगा, यकायक इन्हें इस हालत में धर लेगा जब ये अपने दुनियावी मामलात में झगड़ रहे होंगे। क्यामत इतनी अचानक आएगी, हदीस में आता है कि कपड़ा लेने और देने वाला अभी सौदा कर रहा है, क्यामत आ जाएगी। कोई शख्स अपने घोड़े का हौज लेप रहा होगा, सबसे पहले क्यामत का धमाका वो सुनेगा, और इस वक्त वो वसीयत तक ना कर सकेंगे, ना अपने घरों को पलट सकेंगे। फिर एक सूर फूका जाएगा और यकायक अपने रब के हजूर पेश होने के लिए अपनी अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे, घबरा कर कहेंगे अरे ये किसने हमें हमारी ख्वाबगाह से उठा दिया? ये वही चीज है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था और रसूलों की बात सच्ची थी, एक ही जोर की आवाज होगी और सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। आज किसी पर जर्रा बराबर जुल्म न किया जाएगा और तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे तुम अमल करते रहे थे। ये है क्यामत, सारी जिंदगी जिसको झुटलाते रहे वो आ गई। वो बच्चा जो ना पढ़े ये सोच करके कोई नहीं होना इम्तिहान, और जब इम्तिहान होने लग जाए उस वक्त उसकी कैफियत क्या होगी? देखिए क्यामत वैसे ही बड़ी मुश्किल चीज है, लेकिन उनके लिए जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे उसको, उनके लिए कितनी मुश्किल होगी। तालिब इल्म हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, ट्यूशंस पढ़ते हैं, गैस पेपर ढूंढते हैं, फिर भी कमरे इम्तिहान में परेशान होते हैं। तो जिस स्टूडेंट ने इनमें से कुछ भी नहीं किया उसके लिए वो 3 घंटे क्या 3 सालों के बराबर नहीं होंगे? और उसका नतीजा उसको तबाह और बर्बाद करने की सूरत में नहीं होगा? असल बात यह है कि क्यामत का यकीन ही नहीं है। असल बात है कि लोग ये सोचते ही नहीं है कि हमसे पूछा जाएगा। यकीन करें मैं बदगुमानी नहीं करती, लेकिन हमारे कल्चर में मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही गुमान रखे बैठे हैं कुछ नहीं होना, अल्लाह को हंस के दिखा देंगे, अल्लाह के ऊपर जरा कोई रोब डाल देंगे, वो फलां का नाम पेश कर देंगे, पर्ची सिस्टम चलता है। कल मुझे कोई बता रहा था कि किसी इंग्लिश स्पीकर ने हम पाकिस्तानियों के ऊपर जबरदस्त तनकीद की है, और मैंने भी उनके कुछ लेक्चर सुने हैं, वो पाकिस्तान जा चुके हैं चक्कर लगाए। वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के लोग किस किस्म के मुसलमान हैं, ना हमारा पर्दा पूरा, देख लीजिए पर्दा पूरा से समझते हैं ना, ना हमारी नमाजें पूरी हैं, ना हमारा लाइफस्टाइल पूरा है, और ना हमारे अखलाकियात पूरे हैं। यानी आप देखिए ना कि कुछ समझ तो आती है ना बात। मतलब आप देखिए सिर्फ नाम पाकिस्तान का लिया है तो मैं उन्हीं की बात पेश कर रही हूँ कि आप देखिए लफ्ज़ अरब बोले आप तो अरब कुछ भी करें लेकिन नमाज तो पढ़ते हैं ना 5 वक्त, आप देख लीजिए, कोई अरब कोई होगा इल्ला माशाल्लाह जिसका अल्लाह ने जिक्र कुरान में कर दिया, लेकिन 5 वक्त की नमाजें पक्की हैं उनकी। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि इनकी नमाजों पर ही अल्लाह ने इनको इतना नवाजा हुआ है। जो अहतमाम, इनकी मस्जिदों को जाकर देखें, जमात का अहतमाम देखिए, खुतबा देखिए, हमारी तो नमाजें भी पूरी नहीं। यानी अगर एक मुसलमान को खड़ा कर दिया जाए, इसको जरा A to Z चेक करो, तो बहुत कम होंगे जिनकी हर चीज पूरी निकले। कोई एक तरफ झुका हुआ है तो कोई दूसरी तरफ झुका हुआ है, किसी में एक कमी है कमी है। और हम मुतमईन है कुछ नहीं होना, ऐसे ही होगा, देखना ये ऐसी ही बात कर रहे हैं। शायद मैं सोचती हूँ कि हमारे कल्चर के लोग बेसिकली भोले लोग हैं, यानी मैं इसको बुरा नहीं कहती, भूले हुए तो हैं, भोले हैं, बहुत लीनियट है, इजी गोइंग है, फॉरेन लोगों के लिए अपने प्लान्स चेंज कर देते हैं, वो नहीं है जिसको कहना चाहिए कि जमे हुए। इसलिए अपने आखिरत के लिए भी सोचा हुआ, आई आई ना आई ना सही, देख लेंगे क्या होगा। अल्लाह कहते आनी है और आएगी। और ये जो जुमला है कि देखा जाएगा, जरा सोचिए देखा जाए कहाँ कहाँ भुगतेगा, जब जान निकलेगी उस वक्त देखेंगे, जब रूह का बंद खुलेगा उस वक्त देखेंगे, जब गर्म पानी से बेरी के पत्तों से धुलाएंगे तब देखेंगे। आपने वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा क्लिप है, कई लोगों ने सुना होगा, मुझे नहीं पता कौन से स्पीकर है, लेकिन इंतहा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बातें उन्होंने की है कि जब कब्र में उतारे जाओगे तब देखा जाएगा, जब सांप लिपटेंगे तब देखा जाएगा, जब आग में घुसाए जाओगे तब देखा जाएगा। तुम बताओ तुम किस खुशफहमी में जी रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें जिंदगी में करने के लिए क्या भेजा था और तुम करके क्या आगे। और आप देखिए अल्लाह कहता है कश्तियों को मैं तारता हूं, हम कहते हैं कर दे बेड़ा पार मेरा फुलाना फुलाना फुलाना। कवालियां देखिए, शेर देखिए, कब्रों पे बैठे लोग कहते हैं मेरा बेड़ा पार तो किसी अली ने करना है या किसी अजवेरी ने करना है। फिर हम मुतमईन है, फिर हम कहते हैं काम ही कोई नहीं है, ही कोई नहीं, शौक ही कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि इसराफील यानी फरिश्ते जिनको अल्लाह ने सूर फूकने का काम दिया, वो सूर का लुकमा बनाए हुए हैं। जैसे ये देखिए आप इसको सोचिए, अब ये मैं बोली है ना, ये मेरे आगे है, वो कहते हैं इस माइक को हाथ में पकड़ के खड़े हैं, जब अल्लाह ताला ने कहना है कुन तो इन्होंने इसमें फूक देना और पूरी दुनिया के पड़हच्छे उड़ जाने हैं। आपने फरमाया मैं कैसे आराम करूं, क्योंकि इसराफील ने सूर को हाथ में पकड़ा हुआ है। आज हम कैसे नाफरमानी करते हैं, कितने इंजॉय करते हैं, इतने सख्त मरहले आने वाले हैं क्यामत के। आज जिंदगी में अगर उसकी खबर मिल जाए हम परेशान हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों जो मैं जानता हूं कल जो होने वाला है, अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम हंसना छोड़ दो, तुम बिस्तरों पे अपनी बीवियों से लज्जत लेना छोड़ दो, तुम अपने मुर्दों को कब्रों में दफनाना छोड़ दो अगर तुम्हें पता चले कि कब्रों में क्या आजमाइशें होती हैं। लेकिन जब दुनिया की गफलत का पर्दा मोटे से मोटा होता है, कहते हैं देखा जाएगा। आज की फिक्र करो, हराम है कोई बात नहीं, नाजायज है कोई बात नहीं, नहीं अच्छा कोई बात नहीं, घर तो सज जाएगा, घर तो बन जाएगा। यानी मोटे मोटे गुनाह करके बंदा डरता नहीं, क्यों, क्यामत की फिक्र नहीं। खालिबन हजरत अनस का एक की रिवायत है, वो कहते हैं लोगों वो गुनाह जिसके बारे में हम ऐसे सोचते थे कि ये गुनाह नहीं है, ये एक पहाड़ है जो हमारे सर पे मुसल्लत होगा, अगर हमने वो गुनाह किया तो हमारे सर पे गिर जाएगा, लेकिन आज तुम लोग उसको करते हो और नाक पे मक्खी की तरह उड़ा देते हो। और ये कब की बात की उन्होंने, सहाबा का आखिरी दौर होगा, ताबईन शायद कुछ आगे होंगे, और आज 1400 साल के बाद के मुसलमानों को देखकर इमेजिनेशन में तो लाइए जरा, ये 4-6 बड़े सहाबा अशरे मुबशरे ही आ जाए दुनिया में, तो क्या फिर वो कमेंट्स देंगे आज के ओवरऑल मुसलमान पे। फिर लोग चाहे उनको जजमेंटल कहें, लोग उनको बड़े पिकी कहें, लोग उनको जो मर्जी कहें, लेकिन बात ये सच है। तो कीजिए क्या, अलान आज, टुडे आई एम, आई विल डू माई बेस्ट। आज की कदर कर लें, कल आपका खूबसूरत हो जाएगा। अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी की कदर की, जिन्होंने अपने वक्त को बहुत खूबसूरत गुजारा। आप देखिए अब अल्लाह ताला उनकी तारीफें भी फरमा रहे हैं, और वो कैसे फरमाया, आज जन्नती लोग मजे करने में मशगूल हैं, वो और इनकी बीवियां घने सायों में हैं, मसंदों पर तकिए लगाए हुए, हर किस्म की लजीज चीजें इनको खाने को दी जा रही हैं, और वो वहां मौजूद हैं, और जो कुछ वो तलब करेंगे उनके लिए हाजिर है, और सबसे बढ़ के सलाम उन कौलम में रब रहीम की तरफ से इनको सलाम कहा गया। ये जन्नत की नेमतें लेनी है। किसी ने कहा कि अद दुनिया यौमन, दुनिया एक दिन की है, वलना फी ही सौमन, और हमारा इस दिन में रोजा है। आज दुनिया में जिसने गुनाहों से रोजा रखा, बदतहजीबी से रोजा रखा, शिर्क से रोजा रखा, बिदत से रोजा रखा, सुस्ती से रोजा रखा, टालम मटोल से रोजा रखा, उसकी आखिरत ईद के दिन की तरह होगी। इस पे एक हमारा लेक्चर है सौमे रमजान बुक में से आपको भेजा जा सकता है। बिल्कुल छोटा सा आर्टिकल है, 15-20 मिनट की मेरा हेलो ऑडियो होगी कि ये दुनिया यानी रमजान और ईद के दिन में तकाबुल किया गया है। रमजान के 29-30 रोजे रखकर ईद का दिन बिल्कुल ही फर्क होता है। इसमें घंटों के एतबार से फारिग रहते हैं, भूखे रहते हैं, उसमें घंटों घंटों खाते ही रहते हैं। तो उन्होंने ये पेश किया, जो राइटर है वो कहते हैं कि मोमिन के लिए ये दुनिया रमजान है और आखिरत उसकी ईद होगी। बीवियों की बात, लज्जतों की बात, क्योंकि दुनिया में बाज़ दफ़ा इन रिश्तों को बंदा उस तरह टाइम नहीं दे पाता, उस तरह उनके तकाजे नहीं पूरे कर पाता, क्योंकि अल्लाह के दीन के तकाजे सामने आते हैं। कोई बात नहीं, जन्नत में और होगा क्या। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जन्नती जन्नत में जब अपनी बीवी के साथ होगा तो उनके इर्द गिर्द पर्दे लगा दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ रात नहीं है, वहाँ नींद नहीं है, वहां मौत नहीं है। और जन्नती जब अपनी बीवी के पास जाएगा, उसको लगेगा ये मेरी बीवी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। जो दुनिया में भी तो कंटेंट थे ना, दुनिया में भी तो इधर उधर ताका झांकी नहीं थी, दुनिया में भी को 20 साल बाद भी तो दूसरी शादियां और दूसरी बीवियों के ताने नहीं मिलते देते थे। तो जो पाक मियां बीवी होंगे जन्नत में भी, अल्लाह ताला कहते हैं वो मजे में होंगे। देखिए जन्नती लोगों के मजे और वो और उनकी बीवियां, और किसी रिश्ते का जिक्र नहीं है। क्यों? कि ये फितरत की पुकार है कि जब एक इंसान अल्लाह के हुक्म पर चलता है और उसकी जिंदगी में अल्लाह की फरमा बरदारी आती है, तो सबसे ज्यादा मुतासिर उसके उसका शौहर या उसकी बीवी होती है। क्योंकि हम बाकियों को तो इतना वक्त भी नहीं देते। हर वक्त कौन जाके माँ बाप के पास बैठता है, हर वक्त कौन भाई बहनों के पास जाता है। तो बात क्या पता चली कि जो किया था अल्लाह ने उसको पलटा दिया। आज थोड़ी सी सब्र कर लीजिए, अपने जज्बात पे कुर्बानी दे दीजिए, थोड़ा सा अपने एक दूसरे को समझा बुझा ले, आप देखिए वहां और करना क्या। वहां तो पूरा वक्त यही मौज। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि वो वहां तकिए लगाए बैठे होंगे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और आसमान से आवाज आ रहा है सलामुन कौलम रब रहीम। अल्लाह ताला हमारे कानों को भी ये आवाज सुनाए और हम इसमें रहें। और अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे इस दुनिया में अल्लाह के हुक्मों पे चलने की। इसके बरक्स तस्वीर का दूसरा रुख, वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो आज तुम छट कर अलग हो जाओ। क्लासिफिकेशन हो जाएगी, पोलराइजेशन हो जाएगी वहां जाकर। आज दुनिया में एक ही घर में एक नमाजी तो दूसरा बेनमाजी, एक मुत्तकी दूसरा फासिक, लेकिन रिश्ते हैं खून के हैं, कभी सहर के हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं। अल्लाह वहां सबको खुला मिला नहीं छोड़ेगा, चलो अलग हो जाओ। क्योंकि दुनिया में आप देखिए कि एक थोड़े अच्छे ज्यादा अच्छों में थोड़े अच्छे भी चल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन अच्छा ज्यादा था कौन कम। वहां हर बंदा अपनी अदालत में खड़ा होगा, मेरा अपना कैरियर क्या है, मैं खुद क्या हूं, मेरे लिए वो काफी है। दुनिया में आप देखिए माँ बाप का नाम मिल जाता है, इज्जत मिल जाती है, कभी शौहर का मिलता है, कभी नाना आलिम थे उन आलिम की नवासी आप कहला लिया, कोई आपको किसी और रिश्ते की मोहब्बत से पुकारता है। क्यामत के दिन इनफरादी हिसाब, इज्तमाई मुहासबा तो है ही, इनफरादी हिसाब होगा। आदम के बच्चों क्या मैंने तुमको हिदायत ना की थी कि शैतान की बंदगी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही बंदगी करो ये सीधा रास्ता है। मगर इसके बावजूद इसने तुम में से गिरोह कसीर को गुमराह कर दिया, इसके बावजूद इसने तुम में से गिरोह कसीर को गुमराह कर दिया, क्या तुम अकल नहीं रखते थे। ये वही जहन्नुम है जिससे तुमको डराया जाता रहा था, वो जो कुफर तुम दुनिया में करते रहे इसकी पादाश में अब इसका ईंधन बनो। कौन कहता है कि मैं शैतान की बंदगी करता हूं? कभी आपने किसी से ये सुना कि दो नफिल पढ़ने वास्ते शैतान के करती हूँ रुख शैतान की तरफ? कभी नहीं करता। हैं चंद महरूम लोग जिन्होंने सैतैनिक वर्सेस और शैतान के डेवल डिसेपर्स के नाम पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अमेरिका के एक स्टेट के अंदर एक जगह है कि जहां वाकई डेवल को पूजते हैं, उन्होंने उनकी जो इबादत खाने है उसमें डेवल की शबीहें बनाई हुई हैं, लेकिन आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। ये कौन सी फिर बंदगी है? लिखिए, बंदगी बमाना इतात। इतात तो बंदगी की इंतहा होती है। ये जाहिरी रिचुअल्स तो आपको मुझे इतात तक ले जाते हैं। हाथ पांव जैसे शैतान के रास्ते में लगाए थे, ये सब शैतान की बंदगी में आ गए, अब रहमान के रास्तों में लगाओ। इस जिस्म को शैतान की बातें मान मान कर मोटा किया था, इसको अल्लाह के रास्तों में खुलाओ, पीछे करो। और बात यह है कि एक इंसान जब अल्लाह का बनता है तो सबसे बड़ा इम्तिहान ही यह है कि वो शैतान को पीछे करे। अब ये जो जिस्म है हमारा, क़यामत के दिन देखिए हमारे खिलाफ गवाहियां दे रहा है, कैसे, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, आज हम इनके मुंह बंद किए देते हैं, इनके हाथ हमसे बोलेंगे और इनके पांव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे। जरा देखिए अपने अपने हाथों को, दोनों तरफ से देखें, कल ये गवाही देंगे। ये स्कैनर्स हैं, ये स्कैन कर रहे हैं मेरी आपकी हर चीज। आप देखिए हथेली ना, इसको सफ कहते हैं अरबी में, ये जो होता है, तो ये सफा ही है, इस पे सब कुछ लिखा जा रहा है। और आज इस चीज को साबित कर दिया गया कि हमारी स्किन इज द बेस्ट रिसेप्टर। ये मैं बोल रही हूं ना, आप सुन रहे हैं, कई रिकॉर्डर ट्राई कर रहे होंगे, कई जगह आवाज कई मीडियम से जा रही होगी, पर सबसे ज्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग मेरी स्किन में हो रही है। और क़यामत के दिन अल्लाह बस एक प्ले का बटन दबाएंगे, मेरे हाथ, मेरे पाँव और मेरी ये मेरे अज़ाब बोलेंगे कि ये क्या करती थी और क्या नहीं करती थी। आप देखिए, कभी आप अपने ही बच्चे को बोलता देखें किसी महफिल में आपके खिलाफ, तो सर शर्म से झुक जाता है, क्या बनेगा उस दिन। और वह हदीस पीछे आपको मैंने सुनाई थी कि क़यामत के दिन एक बंदा अल्लाह ताला से कहेगा कि अल्लाह, मैं अपने मामले में किसी गवाह की गवाही नहीं मानता, मुझे तो अपने गवाह पेश करने दे। कहा अच्छा चल कर ले। फिर जब उसके अपने गवाह आएंगे, हाथ पांव आएंगे, तो उसके खिलाफ बोलेंगे। आगे सूरत हामिम सजदा में तो आयत ही बड़ी खूबसूरत आ रही है, तो जब वो हाथ पांव बोलेंगे तो उसके खिलाफ बोलेंगे, तो वो कहेगा अरे बदबख्तो, तुम्हें जहन्नुम से बचाने के लिए तो मैं झूठ बोल रहा था, तुम क्यों सच बोल रहे हो। तो वहां पढ़ेंगे कि हमें उस जात ने बुलाया जिसने दुनिया में हर चीज को बुलाया था। तो याद रखिए कि आसान नहीं है। और जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, यहीं बोलने लग जाए क्या बने। हम शादी में गए, घर में खूब बदतमीजी कर कर आए, किसी से किसी पे हाथ उठाया, शादी वाले हॉल में सबके सामने हाथ बोलने लगे, ये यहां आने से पहले अपनी मासी को डांट के आई है, ये अपने बच्चों पे चीख चिंगाड़ के आई है, ये अपने शौहर के साथ बदतमीजी से बोल के आई है, रहेगी ये इज्जत जो हमारी बनी हुई है थोड़ी बहुत। तो अल्लाह ने हम पे रहम किया है, हम चाहें तो इनकी आंखें मूंद दें, फिर ये रास्ते की तरफ लपक कर देखें, कहां से इन्हें रास्ता सुझाई देता है, कहां से इनको रास्ता सुझाई देगा। हम चाहें तो इन्हें इनकी जगह पर ही इस तरह मसख कर दें कि ये ना आगे चल सके ना पीछे पलट सके। जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं, इसकी साख्त को हम उलट देते हैं, क्या ये हालात देखकर भी इनको अक्ल नहीं आती। अल्लाह अकबर। आप इमेजिनेशन में लाइए, चेहरा है यानी फेस है, फीचर्स नहीं है, आंखें खत्म, बिल्कुल आंखों की जगह प्लेन स्पॉट, होंठ है लेकिन बिल्कुल प्लेन। अल्लाह ने ये बात कही है, एक एक तुम्हारा उस तोड़ के फेंक दूं, तुम मेरे हाथ मेरे आगे नहीं बोल सकते। कभी ऐसा कोई डिफॉर्म्ड बच्चा पैदा हुआ, आप देखें, एक तस्वीर किसी ने एक दफा शेयर की थी, एक आंख थी बच्चे की और वो भी बिल्कुल माथे में, और इधर बिल्कुल प्लेन था, जैसे एक बिल्कुल प्लेन कागज होता है, देख के खौफ आ रहा था कि आप और मैं ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है। और अल्लाह कैसे लोगों को पलट के रख देता है। आप देखिए, पूरी पूरी बस्तियां पलटाई गई। इटली का एक शहर है पोम्पेई, उसके अंदर एक बड़ी कहना चाहिए कि ऐश और कोश वाली बस्ती थी, जिसको आज के दौर में आप कई नामों औरों से भी देख सकते हैं कि लोग वहां जाते ही सिर्फ जुआ और जिना और बदकारियों के लिए थे। ऐसा जलजला आया, अल्लाह ने उनके ऊपर वल्कानो फेंका, जो लावा होता है, जिस शक्ल में वो लोग थे वहीं प्रिजर्व हो गए। लमसखना, ये जो अल्लाह ने तला ने यह लफ्ज बोला ना, लतमसना अला अयुनिहिम फस्तबिकुल खैर, प्रिजर्व हो गए लोग, जिना करते हुए वहीं पत्थर के बन चुके हैं और वो खुदाई में से अब निकला। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। तो बस बेचैन होना है, परेशान होना है इस बात पे कि हमें डर क्यों नहीं लगता, हमें खौफ क्यों नहीं आता। और ये जो लंबी उम्र की बात की, ये भी को जीना है, जब जीने का लुत्फ खत्म हो जाए। आप देखिए कि जिसको लंबी उम्र मिल भी जाती है, उसके जीने, वो जीने के काबिल ही नहीं होता। कभी आप अपने घरों के किसी बुजुर्ग को देखें, 80, 90, 100 साल की उम्र है, दबे दबे लफ्जों में लोग भी कहते हैं अब अल्लाह इन पर रहम ही कर दे, अब तो ये अपनी हाजात भी पूरी नहीं करते। यानी जहां से चले थे कमजोरी से, उसी से तुम्हें अल्लाह ने आगे कर दिया, तो करो क्या, इस दुनिया में उसके आगे दब जाओ। हमने इस नबी को शेर नहीं सिखाया और ना शायरी इसको जेब ही देती है। ये तो एक नसीहत और साफ पढ़ी जाने वाली किताब, ताकि वो हर उस शख्स को खबरदार कर दे जो जिंदा हो और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। क्या ये लोग देखते नहीं, हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों में से इनके लिए मवेशी पैदा किए। एक और चीज़ आपके गौर व फिक्र की, और अब ये उसके मालिक हैं। हमने इन्हें इस तरह इनके बस में कर दिया कि इनमें से किसी पर ये सवार होते हैं, किसी का गोश्त खाते हैं और इनके अंदर इनके लिए तरह तरह के फवायद और मशरूबात हैं। क्या फिर ये शुक्र गुजार नहीं होते? ये सब कुछ होते हुए उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा बना लिए हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इनकी मदद की जाएगी। ये इनकी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि ये लोग उल्टे इनके लिए हाजिर बाज लश्कर बने हुए हैं। अच्छा, जो बातें ये बना रहे हैं वो तुम्हें रंजीदा न करें, इनकी छुपी और खुली सब बातों को हम जानते हैं। मवेशियों की बातें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आपके मेरे घर में, कितनी किस्म का दूध है हमारे घर, दूध, मक्खन, चीज, बटर, आइसक्रीम, गिनते जाइए। अपने लिए काम लिखें, आज अपने फ्रिज को खोलें और हर वो चीज़ जो दूध से बनी है ना उसकी लिस्ट बनाएं और फिर इस शिकायत को सोचें। ये सब कुछ मुझे आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि उन जानवरों ने अल्लाह के दिए हुए फैसलों को कबूल किया। कभी हुआ कि दूध निकालने की कोशिश करें अंदर से पानी निकले, दूध की जगह खून, और जानवर कहते नहीं जी बस खत्म, थक गया दूध दे दे के, कब से तो लगा हुआ, अनथक काम कर रही है ये कायनात आपके मेरे लिए, हम थक जाते हैं, थोड़े दिन की बात है। कोई जानवर कभी आपने देखा जो सिर्फ रमजान में ही दूध दे? मैं नहीं करूंगा, 11 महीने दूध नहीं दूंगा। तो ये सबक है, कंटिन्यूस अतात, टोटल सबमिशन और अनथक कोशिशें और अनथक मेहनतें। अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे। क्या इंसान देखता नहीं कि हमने इसे नुतफे से पैदा किया, फिर वो सरीख झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया, अब वो हम पर मिसालें जिस्मा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। कहता है कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि ये बोसीदा हो चुकी हो। हर बीमारी का इलाज है, बुढ़ापे का क्या इलाज? कोई इलाज नहीं। यहाँ उस शख्स की बात करके जिसने अल्लाह के इस हुक्म को ना माना, हम सबको सोचने पर मायल कर दिया। और वो क्या है कि उसने तो पानी से हड्डी बना ली थी, बच्चा पानी से बनता है ना, तो आज हड्डी से हड्डी बनाना क्या बड़ी बात है। इससे कहो इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने इन्हें पहले पैदा किया था, और वो तख्लीक का हर काम जानता है। वही है जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी और तुम इससे अपने चूल्हे रोशन करते हो। क्या वो जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया इस चीज पर कादिर नहीं कि इन जैसों को पैदा करे? क्यों नहीं, जबकि वो माहिर खल्लाक है। वो तो जब किसी चीज का इरादा करता है तो इसका काम बस ये है कि इसे हुक्म दे, हो जा, और वो हो जाती है। पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज का मुकम्मल इख्तियार है, और इसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। ये है सूरत यासीन का पैगाम। बेहतर है कि खुद पलटने की फिक्र करो ना कि तुम्हें के पलटाया जाए। कभी किसी ने किसी डेड बॉडी को गुसल दिया हो ना, तो उसको पलटाना एक इशू होता है, भारी हो जाती है लाश, सख्त हो जाती है। पलटाने के लिए 2-3 लोगों की हेल्प चाहिए होती है, इधर से इधर, इधर से उधर। अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं कि तुम सोचो। अब आप देखिए, अभी सिर्फ हमने एक तर्जमा ही किया है हल्के फुल्के अंदाज से। अगर लोग 70-72 बार सूरत यासीन को पढ़ने के साथ साथ एक बार इसको गौर व फिक्र से पढ़ और समझ लें, तो क्या जिंदगी में पलटावा ना आए? तिलावत सुनते आखिरी आयतों की, अपना मुहासबा करते हुए। अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ पलटाए, तो पूरी सूरत का पैगाम फिर यही था। और इसी से आपने मैंने ये देखना है कि हमारे अपने अंदर क्या तब्दीली आ रही है इस कुरान को पढ़ के। अगली सूरत सौफात है, आप कह लीजिए सौफात सफ़े बांधने वाले, डिसिप्लिन सिखाने वाली सूरत। फरिश्ते कैसे सफ़े बांधते हैं यहाँ आपको दिखेगा, और सफ़ बंदी की अहमियत देखिए कुरान पाक में दो सूरतें हैं, सौफात और सफ़। सफ़ क्या होती है? रोज़ बनाना। रो कब बनती है? किस चीज़ की दलील है? डिसिप्लिन की। हक वाला हक अपने वक्त पे ले, ये नहीं कि बाद में आने वाला पहले वो चीज़ लेकर चला जाए और तुम्हें पीछे डाल दे। कायनात इसी असूल पे चल रही है, और वो क्या है? अपने हिस्से का काम करो, लेग पुलिंग ना करो, डिसिप्लिन रहो। आज वेस्ट ने इस असूल को अपनाया, कामयाब है। हम वो लोग जिनको दिन में 5 बार सफ़े बनवाकर नमाज पढ़ाई जाती है, हम उतने ही डिसऑर्गनाइज्ड हैं। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। आइए पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्साफाति सफ्फा, फज्जाजिराति जज्रा, फत्तालियाति ज़िक्रा, इन्ना इलाहकुम लवाहिद। कितार तार कितार सफ बांधने वालों की कसम, फिर इनकी कसम जो डांटते फुटकारने फिटकारने वाले हैं, फिर इनकी कसम जो कलाम नसीहत सुनाने वाले हैं। इतनी कसमों के बाद जवाब सुनिए, इन्ना इलाहकुम लवाहिद, तुम्हारा माबूद हकीकी बस एक ही है, वो जो जमीनों आसमान को और तमाम चीजों का मालिक है, जो जमीनों आसमान में है और सारे मशरिकों का मालिक। तो क्या कहें, वह माली अला अब्दुल्लज़ी फ़तरनी। कायनात में अल्लाह ताला ने अपने वजूद की दलील में इतना कुछ रख दिया कि हम उसको बिन देखे भी उससे डरे। अपने लिए अमल की बात इसमें यही नोट कीजिए कि मैंने आपने फरिश्तों की तरह अल्लाह के हर हुक्म पे कान रखने हैं। फरिश्तों की सिफात से कुरान पाक भरा हुआ है, अल्लाह ताला हमें उनसे भी नसीहत लेने वाला बनाए। फिर फरमाए, नज़ैय्यन्ना सम्मा दुनिया बिज़ीनत निल कवाकिब, हमने आसमान दुनिया को तारों की जीनत से आरास्ता किया, और हर शैतान ने सरकश से और हर शैतान ने सरकश से इनको महफूज कर दिया। ये शैतीन मलय आला की बातें नहीं सुन सकते, हर तरफ से मारे और हांके जाते हैं, और इनके लिए मुसलसल अजाब है। ताहम कोई इनमें से कुछ ले उड़े तो एक तेज शोला इनका पीछा करता है। सितारों के तीन मकासद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, जिसमें से दो इस एक ही आयत में है, खूबसूरती और शयातीन को पीछे भगाना। इससे क्या पता चलता है कि जीनत हो लेकिन नुमाइश ना हो। जब नुमाइशी जीनत हो और मकसद ना हो तो जिंदगी बोझल हो जाती है। मसलन आपके इस्तेमाल की चीजें हैं घर में, पर्दे लगे, उसकी जरूरत है ना, तो उस पर्दे का अगर डिजाइन रंग खूबसूरत हो और उस पर अगर कोई थोड़ा बहुत चल गया, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि पर्दा आपको एक काम भी दे रहा है। लेकिन सिर्फ कोई एक ऐसी चीज ला के घर में रख देनी जो सिर्फ जीनत हो, ये पसंदीदा नहीं है। जब हमारा माल कसरत से डेकोरेशन और ऐसी सजावट की चीजों पे लगने लगता है तो याद रखिए मकसद से गाफिल होते हैं। कल तक तो जीनत और सजावट घरों की थी, पर्दे कुर्सियां मेज फर्नीचर, ये तो बचपन से सुना। आज का एक इशू क्या है? खाना पकता है 10 यूरो में और उसको सजाते हैं 20 यूरो में। केक कितने का बनता है? 2-4 यूरो का आटा मैदा ले आइए, चीनी डालने 5 यूरो लगते होंगे, और उसकी जो आइसिंग और उसकी टॉपिंग और उसकी तस्वीरें, क्या क्या दुनिया में काम शुरू हो गए डेकोरेशन के नाम पे। ये बेमकसद कौमों की अलामत है। कभी बैठ के सोचे, देखिए ये नहीं अल्लाह कह रहा बेडंगा करें, खाना पकाते हैं ना अच्छा रखें, खाने का रंग अच्छा हो, जायका अच्छा हो, सुर्ख सालन है, ऊपर सब्ज धनिया डाल दीजिए, सफेद डोंगे में डाल दीजिए, ऊपर हल्का सा मसाला डाल दें, हरज की बात कोई नहीं है। लेकिन मकसद ये बन जाए कि डेकोरेशन पे वक्त भी ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा। बास सिस्टर्स को इतना क्रेव हो जाता है और वो अपनी तारीफ सिर्फ करवाने के लिए दोस्तों के नाम पे 10-10 खाने बनाती हैं, और एक एक खाने के ऊपर जो वक्त और एफर्ट, और एक एक चीज के लिए एक एक पुर्जा ढूंढेंगे, ये इसके लिए, फिर ये मटीरियल चाहिए, एक एक दुकान से चाहिए, एक उससे। ये दावत आपने की कि अपनी सर पे मुसीबत डाल दी। और अक्सर देखिए जो सजावट की चीजें होती हैं लोग उतार के साइड पे कर देते हैं। बामकसद जीनत कीजिए, जो पहनना है, जो ओढ़ना है, जो खाना है, जो पीना है, अच्छा कीजिए। लेकिन सिर्फ सजावट का एक शोपीस बनकर अपने आप को पेश करना, ये डिस्प्ले कल्चर आप में सितारों की इस मिसाल से समझ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। پھر فرمایا اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے، ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے مذاق میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے، بھلا کہیں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں، اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے ابا اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔ ذرا سا انداز تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ بات بتائی کہ تم مذاق کرتے ہو، دین کی بات بتانے والے کا مذاق کرنا یہ اپنی آفت کو پکارتا ہے۔ وہ تو بے بس ہو سکتا ہے نوح کی طرح، لیکن اس کا رب بے بس نہیں ہوتا، پھر وہ ایسی پکڑ کرتا ہے کہ جس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیے کہ جب لوگ اپنے باپ دادا کے نام پہ سٹبن ہو کر حق کا انکار کریں تو یہ تو سب سے بدتر قسم کی بات ہے، کریں کیا؟ ایسے لوگوں کو انذار کریں جو بھی اپنا مذاق اڑایا جانا برداشت کر لے اور اپنے کام سے پہ لگا رہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے۔ پھر قیامت کی بات، بس ایک جھڑکی ہوگی اور یکایک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر یہاں آ جائیے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، الان، قیامت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے۔ اگر آپ نے میں نے آج کے اس وقت کا فائدہ نہ اٹھایا تو یاد رکھیے نقصان کیا ہوگا، قیامت کے دن کھڑے، آپ ذرا اس جملے کی تلہی تو محسوس کیجئے، ہائے ہماری کمبختی، جیسے انگلش میں لوگ کہتے ہیں ہاؤ بیڈ لک وی آر، حالانکہ یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، ہم بڑے بدبخت ہیں، ہم نے تو اس کی تیاری نہیں کی۔ حکم ہوگا گھیر لو سب ظالموں اور ان کے ساتھی اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کوئسچنز ہوں گے، کوئی گزرتا جائے تو گزرتا جائے، اور اگر وہاں امیگریشن پہ روک لیا جائے رکیں ذرا ادھر آپ سے کچھ پوچھنا ہے، تو ہاتھوں کے طوطے چڑیاں بند سب اڑ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا حال ہوگا جس کو روک لیا گیا کہ ذرا رکیے آپ کی ذرا چیکنگ ہوگی، کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے، یعنی آج تو اتنی بھیگی بلیاں بن گئے کہ ایک دوسرے کے سامنے سرنڈر کریں، اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ آپ نوٹ کریں 23rd پارے میں قیامت کی جھلکیاں اور بالکل آنکھوں دیکھی سور کی باتیں، قیامت کے دن روکا جا رہا ہے، کرا جا رہا ہے۔ اب اس منظر کو ذرا سے شعور کے ساتھ پڑھیے کہ جب لوگ بن دیکھے دوسروں کو فالو کرتے ہیں، بن سوچے بغیر علم کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں تو وہاں ان کا کیا حال ہوگا۔ فرمائے باہم تکرار شروع کر دیں گے، پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود سرکش لوگ تھے، آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ یہ جھگڑا، یہ لڑائی ذرا آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھیں، ایسے نہیں لگ رہا کھلی جگہ اور دو فریق آپس میں لڑ رہے ہیں، دو فریق نہیں بلکہ دو گرہ اور باقی سب کھڑے ہوئے میچ دیکھ رہے ہیں ان کا لڑنے کا۔ قیامت کے دن جہنم کے عذابوں میں ایک عذاب جھگڑوں کا ہوگا، بالکل ایسی ہے جیسے دنیا میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو دنیا عذاب ہو جاتی ہے، وہ گھر جہنم بن جاتا ہے جہاں ہر وقت لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی ہوں۔ تو جہنم میں ایک تو گرمی، سفوکیشن، گھبراہٹ اور اوپر سے لڑائی۔ دنیا میں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز وہ سب اس عذاب میں مشترک ہوں گے، ہم مجرموں کے ساتھ یہی کیا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنوں کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں شاعر مجنوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا بدلہ جو تم کرتے رہے۔ یہ بھی انداز بہت دکھ رہا ہے اس بارے میں، आमाल का बदला, आमाल का बदला। अल्लाह ताला ने हमारे सामने सब कुछ रखा है। देखिए, अकीदे के फर्क ने मंजिल जुदा कर दी। एक साथ दो लोग निकलते हैं, एक का रास्ता इधर चला जाता है, एक इधर। क्यों? कि आगे से तरजीहात फर्क है। एक को मस्जिद जाना है, वो राइट ले लेगा, एक को सिनेमा में जाना है, वो रॉन्ग लेफ्ट ले लेगा। जिंदगी में आप और मैं अपने लिए इस आयतों पे थोड़ा सा अमल का एक नुक्ता लेते हैं। पहली बात है, अपने अकीदे की फिक्र कीजिए। मेरा अकीदा ठीक है? अकीदा क्या है? तीन चीजों को जोड़ लें। अल्लाह सुबहान तआला की सिफात, उसकी खूबियां, नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स, अस्मा सिफात ठीक जानती हूँ। अल्लाह क्या है और अल्लाह क्या नहीं है, ये जानती हूँ। पहली चीज आपने मैंने अपने लिए ये चेक करनी है। दूसरी चीज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम, आप क्या थे, क्या कर गए, आज उनके क्या हकूक हैं, क्या उनके ऊपर हमारा मामला होना चाहिए, इसको नोट करें। आप लिखते नहीं? तीसरी चीज क्या होगी, यानी अल्लाह का मुकाम, रसूल का मुकाम, रसूल क्या थे क्या नहीं, और तीसरा, मरने के बाद हकीकत में क्या हो रहा है, कौन मेरी मदद करेगा, कौन नहीं करेगा, कहां सिफारिश होगी, कहां नहीं होगी, किधर ये होगा वो होगा। इन तीन चीजों की सबसे पहले तो अपनी फिक्र करें। और अगर आप इजाजत दें, आप में से लगता है कुछ लोगों को कि ये मेरे अंदर कमजोरी है, तो ये तीन मजमून पढ़ लें आप रमजान के बाद। इसके बगैर कोई अमल कबूल नहीं है। अब्दुल्ला बिन उबई ने अगर कुछ नेकियां की भी हुई थी, सब जाया हो गई, हालांकि खुद को मुसलमान कहता था। अबू लहब भी हाजियों को पानी पिलाता था, लेकिन एक जर्रा फायदा नहीं होगा क्योंकि कुफर पे था। तो अकीदा बड़ी बुनियाद है। अपनी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर सेकंड लेवल पे अपने घर वाले, बच्चे, शौहर, इनकी देखिए। इधर से उठिए तो अपने भाई बहन, एक एक नाम लेके देखें। और जहां मौका, ये कच्ची पक्की बहसें छेड़ के लड़ाई ना करें, क्योंकि जितनी लड़ाई झगड़ा हमारा अकीदे के मौजू पे होता है, उतना शायद किसी और पे नहीं होता। और चूंकि हमें खुद पूरा इल्म नहीं होता, दो बातें सुन के हम भी शक में पड़ जाते हैं। लेकिन फिर अपने भाई बहनों, फिर दोस्त अहबाब, साथी, और फिर अगर दर्द बढ़ता जाए तो अपने इर्द गिर्द हर बंदे के ये तीन मौजू दुरुस्त करा दीजिए। 13 साल की जंग इसी अकीदे की जंग थी। जितने मर्जी अमल सवाले कर लीजिए, एक अकीदे की खराबी गलत है। मैं आपको मिसाल दे देती हूँ सिर्फ समझाने के लिए। शोहर और बीवी का ताल्लुक निकाह की सूरत में बनता है। निकाह को अकद कहते हैं, अकद मसनूना। यही अकद अकीदा में बदल जाता है जब अल्लाह के साथ आता है। एग्रीमेंट का नाम है। अब अकद लिखा, उसके बाद अब बीवी अच्छी है, बुरी है, नाश्ता बना के देती है, नहीं कपड़े सीती है, धोती है, नहीं अच्छी है, ये तो बाद की बात है ना। कोई अपने निकाह तो किसी से हो ना, तो ये सारे ही काम किसी मर्द के लिए करने लग जाए तो कोई बर्दाश्त करेगा? पहले ताल्लुक अल्लाह से, रसूल से, और आखिरत के मामले में ठीक करें। यही बात आपको और मुझे यहां दिख रही है। अब दूसरी सूरत के लोग के, जिन्होंने वाकई अपनी फिक्रें कर ली थी, अल्लाह ताला उनका जिक्र फरमाते हैं कि असल बात यह है कि ये वो लोग नहीं है कि जो अपने आप को हवाओं के हवाले में छोड़ देते थे, या बिल्कुल इन्होंने अपने आप को अलग किया हुआ था, बल्कि ये वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने दुनिया में मौका दिया और इन्होंने इस मौके से फायदा उठा लिया, अपनी इस्लाह फरमा ली। दूसरे लोग, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे इस इंजामे बद से महफूज होंगे। इनके लिए जाना बूझा रिस्क है, हर तरह की लजीज चीजें और नेमत भरी जन्नतें जिनमें वो इज्जत के साथ रखे जाएंगे, तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे। दिलों में चूंकि कीने और बुगज नहीं होंगे तो आमने सामने बैठेंगे। शराब के चश्मों से सागर भर कर इनके दरमियान फिराए जाएंगे। शराब क्या है? मशरूब। सीधी सी बात है, जहां जन्नत में लफ्ज शराब आए तो समझ लीजिए शराब कहते हैं अरब लोग पीने की चीज को। दुनिया की शराब जो रियल शराब है वो बुरी क्यों है? क्योंकि उससे नशा भी है और उससे बद तहजीब भी है। जन्नत में अल्लाह ने क्या क्या देना है, आप उसको शराब कहें, आप उसको मशरूब कहें, लेकिन उसमें वो कबाहत नहीं है जो कि दुनिया में होगी। शायद नाम शराब अल्लाह ने इसलिए इस्तेमाल किया कि जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के खौफ से छोड़ी, उनको वहां पीने को मिल जाए। इसीलिए फरमाया, ये चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए लज्जत होगी। दुनिया की शराब अल्लाह ना चखाए, लेकिन सुना है कि बदजायका होती है। ना इनके जिस्म को इससे कोई जरर होगा, ना इनकी अकल इससे खराब होगी। दुनिया की शराब फेफड़ों को गला देती और अक्लों को खराब कर देती। और इनके पास निगाहें बचाने वाली खूबसूरत और आंखों वाली औरतें होंगी, ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली, दुनिया की शराब पीकर किसी तवायफ के पहलू में बैठने वाला। वो क्या जाने कि वो क्या लज्जत होगी जब अल्लाह जन्नत में आप मनपसंद चीजों को अता करके ऐसी खूबसूरत महफिलें दे देगा। आप देखिए कि सिर्फ हलाल और हराम का फर्क है, चॉइस का फर्क है। अगर दुनिया में किसी की इन चीजों में कशिश है ना, तो उसको आखिरत में बदल दें, फिर देखिए कितनी तब्दीली आती है। अब एक मंजर आंखों में लाइएगा, इमेजिनेशन में लाए, एक कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, स्काइप की वीडियो कॉल। आज के दौर में तो इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। जन्नत वाले ऊपर जन्नत में हैं, जहन्नुम वाले नीचे हैं, इमेजिन करें कितने फासले हैं। अब इन दोनों में हालात देखिएगा, अल्लाह कहां वहां से सैटेलाइट के जरिए जन्नत में बैठे हुए शख्स को जहन्नुम का एक शख्स दिखाने लगे, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर हालात पूछेंगे, इनमें से कहेगा, दुनिया में मेरा एक हमनशीन था, हमनशीन किसको कहते हैं, कुलीग, साथ बैठने वाला, वो मुझसे कहा करता था, क्या तुम भी तस्दीक करने वालों में से हो, क्या वाकई जब हम मर चुके होंगे और मट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर बन जाएंगे तो हमें जजा सजा दी जाएगी। यानी आखिरत का मुनकर था, डाउट्स पैदा करता था। अब क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि वो साहेब अब कहाँ है? ऑफर की जाएगी कि आप इस बेईमान शख्स का हाल और अंजाम देखना चाहते हैं। ये कहकर जो ही वो झुकेगा, यानी ऊपर बैठा शख्स नीचे देखेगा, तो जहन्नुम की गहराई में उसको देख लेगा। क्या ये बात सच नहीं? कुरान की आयत है, तर्जमा पढ़ लीजिए, मैंने तो कोई एक लफ्ज नहीं बोला इसमें, और कुरान पे हम सब मुसलमानों का ईमान है, तो फिर ये होगा ना, है ना, जहन्नुम है जन्नत, और बुरे काम करने वाले मुशरिक और काफिर जाएंगे जहन्नुम में। आपको मुझे उनका दिफा करने की क्या जरूरत है? करना है तो उन तक दीन पहुंचा दीजिए, बदलना है तो लोगों का अकीदा बदल दीजिए, कोशिश तो कर लीजिए, अदरवाइज इस पे कोई ना बोले कि ये होगा कि नहीं होगा। खैर, अब जहन्नुम में उसको देखा और इससे खिताब करके कहेगा, आप कहते हैं हाय कैसे करेगा इतनी ऊपर से नीचे, तो आप पाकिस्तान कैसे बात करते हैं, अमेरिका की कॉल कैसे मिलती है, और ऑस्ट्रेलिया कैसे बात करते हैं? अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जाएं तो 48 घंटे के करीब लग जाता है, और फोन कॉल में लाएं तो 48 सेकंड में कनेक्ट हो जाती है। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? ये बातें उनको मुश्किल लगी होंगी जिन्होंने उस वक्त ये सुनी थी, जब यहां से वहां तक तो आवाज जाती थी, बाहर तक भी नहीं जाती थी। आज के मुसलमान को तो साइंस ने बहुत सारा दीन सिखा दिया, और आखिरत के बहुत सारे मराहल आप आज साइंसी तहकीकात के बाद जो चीजें सामने आई उसकी रोशनी में भी देख सकते हैं। अब दोनों की कॉल मिल रही है, सवाल जवाब देखिएगा। खुदा की कसम, तू तो मुझे तबाह ही कर देने वाला था, मेरे रब का फजल शामिल हाल ना होता तो आज मैं भी इन लोगों में से होता जो पकड़े हुए आए हैं। अच्छा तो क्या अब हम मरने वाले नहीं हैं, मौत जो हमें आनी थी वो बस पहले आ चुकी, अब हमें कोई अजाब नहीं होना। इसमें से हाईलाइट कीजिए और वाकई दिल की गहराई से अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मामला आया था, और वो क्या था, قالت الله ان كدت لتردين, मुहासबा करते हैं, मेरी भी कोई ऐसी दोस्त है जो मुझे कुरान से दूर करती है, मेरा भी कोई ऐसा साथी है जो मेरे अकीदे को बिगाड़ने की कोशिश करता है, मेरा भी कोई ऐसा रिश्तेदार है जो मेरे अच्छे खासे अकीदे की ऊपर खच्चे उड़ा देता है, तो आज फिक्र कर लें। इससे क्या पता चला कि अल्लाह सुबहान तआला ने यह बता दिया कि दोस्तियां सोच के करो। अलमरु अला दीनी हलीली ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पे, रिश्ते जोड़ो तो सोच के जोड़ो। पीछे पढ़ लिया आपने सूरत बकरा के ही शुरू में कि मुशरिक मर्द मुशरिक औरत से निकाह नहीं करता। आखिर ये सब कुछ क्यों कहा अल्लाह ने? इसलिए कहा कि अपने अकीदों की फिक्र करो। हजरत उमर फारूक ने अपने दौर में किताबी औरत से निकाह पर भी पाबंदी लगा दी थी, हालांकि एक खास हद तक जायज है, हम पढ़ के आए पीछे आयतों में, कहते थे क्यों, जब ये अहले किताब औरत से शादी करते हैं तो अपनी मुसलमान औरतों से कौन करेगा, एक बात, और दूसरा कहते थे कि ये औरतें अपने साथ बेहयाई लेकर आती हैं, इनको लिबास हिजाब के ज्यादा तरीके नहीं आते, तो इनके साथ जब हमारे मर्द शादियां करेंगे तो होगा। और कहते थे ये औरतें जब हमामों में जाकर गुसल करेंगी यानी इज्तमाही जगह होती थी उस दौर में, जहां औरतें एक जगह पे जाती थी, एक में मर्द, इस तरह हमारे घरों वाले हिसाब तो नहीं थे। तो कहते थे जब ये किताबियां औरतें जाकर हमामों में यानी स्विमिंग पूल्स में या वॉशरूम्स में जाकर गुसल करेंगी तो हमारी मुसलमान औरतों की हया खत्म करेंगी। इस बात पे उस दौर में उमर ने, और उमर लगा सकते थे, हुक्मरान अपने दौर में कोई भी पाबंदी लगा दे। आज का क्या हाल है? चंद सेकंड सोचिए, क्या मैं दूसरों से ताल्लुक जोड़ते वक्त इस चीज को अहमियत देती हूँ? और देखिए, जब बात सारी चीजों दोस्तियों में रिश्ते की आई है तो फिर चंद कड़वे जुमले सुन लीजिए। हम सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग रिश्ते करते हुए होते हैं। ये चला गया तो अब अगला तो आना ही नहीं रिश्ता बेटी का, पकड़ लो। नमाजी नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा शिर्क है कोई बात नहीं, अकीदा खराब है कोई बात नहीं, गाड़ी तो है, कोठी तो है, बंगला तो है। और एक जुमला लिख लें, हम खुलते ही उस वक्त हैं जब हम रिश्ते करते हैं। और मैं एक जुमला पीछे बोला ही हूँ, आपको शायद नहीं याद होगा, मुझे फिर याद आ रहा है। असल में मैं क्या हूँ? जैसे इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मैं कुरान पढ़ा रही हूँ, जो मेरे साथ घर में रहेंगे वो मेरे मामला देख लेंगे, लेकिन मैं असल में क्या हूँ? जो मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हमारे अंदर का अक्स होते हैं। बच्चों की अच्छी फिक्र, बच्चों का अच्छा किरदार, उनकी तरबियत आपके अंदर से अच्छा होने की दलील है, क्योंकि इंसान की फितरत में है कि वो अपनी औलाद को अपने से अच्छा देखना चाहता है। तो आप अपने अंदर को कमी देखते हैं, बच्चों में बुरी कर देते हैं। आपने कुरान नहीं सीखा, बच्चों को कुरान सिखाते हैं। आपकी जिन बचपन में बहुत कमियां थी, सिखाई। आपकी औलाद असल में आपका परतो है। और अगर आप और मैं अपने बच्चों की दुनिया दुनिया दुनिया, तालीम तालीम तालीम, जॉब जॉब जॉब, घर बंगला कोठी है, तो मानिए सॉरी टू से, फिर हम वो हैं। वरना हम कभी बच्चों के नाम पे मजबूर ना हो। देखिए, मैंने लोगों को सबसे ज्यादा मजबूर होते देखा है तो बच्चों के नाम पे होते देखा है। बच्चा बच्चा बच्चा, बच्चे की शादी, बच्चे की खुशी, बच्चे, अब फिर बच्चों के ससुराल की परेशानियां, फिर बहू की परेशानी, फिर बेटे की दामाद से डरते हैं, सबसे डरते हैं। लेकिन वमा ली अलाबुदुल्लज़ी फतरनी, अल्लाह ऐसी अगर औलाद दे जो ऐसी बात करने की दावत दे, या उसकी खुशी के लिए कुछ करना पड़े, अल्लाह की कसम मौका बन जाए तो जाके मुंह पे कह दे वमा ली अलाबुदुल्लज़ी फतरनी, अकेले जाओ शादी करके आ जाओ, मैं नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे लिए खुश नहीं, अल्लाह को नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि आबदुल्लज़ी फतरनी, उसने जिसने पैदा किया उसका हक। हम सबसे ज्यादा अल्लाह का हक भूलते ही तब है जब हमारे सामने ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है और फिर खुद मजबूर होते हैं। किसने कहा आपको मजबूर होने को? फिर कहते हैं बच्चों पे जोर नहीं चलता। तो बच्चों को किसने बिगाड़ा? उनको किसने अकीदे का फर्क ना बताया? और अब ये चीज इतनी कसरत से सुनने में आ रही है कि चले इस्लाम और मुसलमान और नमाजी और गैर नमाजी और एक किस्म का दूसरा, उसको तो अब छोड़ दीजिए। अब इस दौर का जो मसला बन गया है वो क्या बन गया कि काफिरों के साथ हमारे बच्चों की शादियां हो रही हैं। अहले किताब का लफ्ज नहीं काफिर बोला मैंने, शऊर ही नहीं। वो कहते हैं कुछ नहीं होता, आई लाइक हर, शी इज गुड, नो प्रॉब्लम, वो ऐसी नहीं वैसा नहीं। ऐसे लोग हैं? एक सिस्टर थी तो वो एक ऐसे लड़के से शादी करना चाह रही थी जो खुद को शिया कहता था, या कोई उसका अपना नाम था, कोई भी नाम होगा, अब ना मुझे उनका पता ना उनका पता। और कहती वो बहुत अच्छा है, वो प्रैक्टिसिंग नहीं है, वो ऐसा नहीं, और वो खुद दूसरी सोच पे थी। यकीन करे शायद 8 दिन शादी नहीं निभी। शादी से पहले वो और रूप होता है, वो लवर होता है, शादी के बाद वो हस्बैंड होता है, फिर वो बर्दाश्त करता है या फिर दीन टूटता है या कुछ। तो ये मिसाल जो आपके मेरे सामने है कि वो दोस्त जहन्नुम में पड़ा और वो आप वहां बैठ के जन्नत में करे, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं इसकी बातों में नहीं आ गई। किस किस की बातों में आते हैं? अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। अब आगे जहन्नुम का एक मंजर, अल्लाह ताला आप सबको हमें उस बुरे अंजाम से बचाए और हमारे प्यारों को भी बचाए। मिसाल दी, फरमाया अगर तुम बच गए हो, यानी तुमने अल्लाह की बात मान ली है और अपनी गलत चीजों को छोड़ दिया, फरमाए नहाज़ लहुल फौज़ुल अज़ीम, यकीनन यही अजीम शान कामयाबी है। ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। कौन सी है ये? बुरी दोस्तियों को छोड़ के जन्नत में पहुंच गए। बोलो ये ज़ियाफ़त अच्छी है या ज़क्कूम का दरख्त? हमने इस दरख्त को जालिमों के लिए फितना बना दिया है। वो एक दरख्त है जो जहन्नुम की तह से निकलता है, इसके शगुफे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सर। जहन्नुम के लोग इसे खाएंगे और इसी से पेट भरेंगे, फिर इस पर पीने के लिए इनको खौलता हुआ पानी मिलेगा। इसके बाद इनकी वापसी इसी आतिशे दोजख की तरफ होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया और इन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ चले। हालांकि इनसे पहले बहुत से लोग गुमराह हो चुके थे और इनमें से हमने मतनबेह करने वाले रसूल भेजे थे। अब देख लो कि उन तनबीह किए जाने वालों का क्या अंजाम हुआ। इस बद अंजामी से बस अल्लाह के वही बंदे बचे हैं जिन्हें इसने अपने लिए खालिस कर दिया। अल्लाह हमें अपने लिए खालिस कर दे। आप देखिए कि मछली का एक कांटा भी गले में फंस जाए खाना खाने के दौरान क्या हाल होता है। आंखें उबल आती हैं भाई, गोता लग जाए, उछू लग जाए, गले में कतरा एक खाने का गुजर जाए सांस की नाली की तरफ, देखिए क्या हाल है। क्या बनेगा जब इस वक्त वहां वो ये कड़वे खाने खाने पड़ेंगे, थोर और जरी इस तरह के खाने हैं जानों के, जख्मों की धोवन, पसीना, बदबू वाली चीजें। तो कौन बचेगा? मुखलसीन बचेंगे। अल्लाह मुखलस बना दे। देखिए यहां भी सूरत में आप बार बार ये लफ्ज पढ़ रहे हैं, एक होता है लफ्ज मुखलस और एक होता है मुखलस। असल बात कौन है? मुखलस बनना। मुखलिस कौन है? ग्रामर की रोशनी में देखे तो फाइल है, और फाइल कहते हैं काम करने वाले को। मुखलिस वो शख्स है जो इखलास हासिल करने पे स्टिल काम कर रहा है। ही इज वर्किंग ऑन इखलास के आई वॉन्ट टू बी मुखलिस, यानी स्ट्रगलिंग दौर चल रहा है। बट मुखलस मुफअल मफूल का वजन है, सब्जेक्टिव है। ये कौन है? जो कर चुका। अल्लाह हमें मुखलस बना दे। कोशिश तो करनी पड़ेगी, धब्बे इतने आराम से थोड़ी उतरते हैं। पुराने धब्बों को तोड़ने में मेहनत करनी पड़ती है। अब आगे ऐसे ही मुखलसीन के किस्से आ रहे हैं, जिसमें पहला किस्सा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। वलकत नादान नूहन फलनीमल मुजीबून। हमने इससे पहले सॉरी हमको इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा था, तो देखो हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले थे। हमने उनको और उनके घर वालों को कर्बे अजीम से बचा लिया। ये कौन सा कर्बे अजीम है? फिर लिखिए, शिर्क वाले लोगों में रहना, क्योंकि वमा अली अला अब्दुल्लजी फतरनी, पूरे बारे में तौहीद छुपी हुई है। जब तक आप और मैं अल्लाह का हक नहीं पहचानेंगे, हमें समझ कोई नहीं आएगी। तो एक ईमान वाला मुशरिक माहौल में तो खुश नहीं रह सकता, जहां शिर्क हो, जहां अल्लाह की नाफरमानी हो, जहां कानून टूटे, जहां अल्लाह के नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाए, वो उसके लिए कर्बे अजीम है। ये अलग बात है, हम कहते हैं इट्स ओके, डोंट बी रिजिड, घर का माहौल भी तो खराब नहीं करना ना। हम रस्मों को नहीं छोड़ सकते थे, उन्होंने अपने प्यारों को छोड़ दिया। फरमाए और उसी की नस्ल को बाकी रखा, और बाद की नस्लों में इनकी तारीफ और तौसीफ छोड़ दी। सलाम है नूह पर तमाम दुनिया वालों में, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा दिया करते हैं। दर हकीकत वो हमारे मोमिन बंदों में से था। फिर दूसरे गिरोह को हमने गर्क कर दिया। क्या पता चला कि नूह को 950 साल की तबलीग के बाद अल्लाह ने इतना क्रेडिट दिया। आज जो इस रास्ते पे अगर 4 दिन भी चलता है, अल्लाह उसको भी देने को तैयार है। मत सोचे कि उनकी तारीफ और तौसीफ है। आज के दौर के आप मुखलस बन जाए, आप दुनिया में इस किताब का नाम तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह अपने पास फरिश्तों में लिख देगा, फरिश्तों वो मेरी बंदी है, कुरान पढ़ के मुखलस बन गई, उसकी तरजीहात सेट हो गई। और तरजीहात का सेट होना क्या है कि वमा अली अला अब्दुल्लजी फतरनी। आज अपने दिल को इस पर जमा के उठिएगा, यहां से मैंने अल्लाह के लिए किसी को नाराज नहीं करना, मैं क्यों करूं? देखिए ना आप लफ्ज़ देखिए ना, वमा लिया, ऐसे कहेंगे मुझे क्या हुआ, यानी अगर बड़ा इसका ठेठ तर्जमा करूं ना, वमा लिया मुझे क्या हो गया, यानी मैं तुमसे क्यों डरूं, मैं तुम्हारी बात क्यों मानू, मैं तो उसकी मानूं कि अल्लाह ज़ी फ़तरनी व इलैही तुरजऊन, जिसको जवाब देना है उसके सामने जाऊं, तुमसे मैं क्यों डरूं। बस ये टोन आ गई तो मुखलस हो जाएंगे। सबसे बड़ी रुकावट हमारे और मुखलस होने के बीच में ये मसले हैं जो हम लोगों को नो नहीं कह पाते, और भीगी बिलियां बनकर मुजरिम बनकर अपनी खुशियों के मौकों पे जाते हैं। क्या करें, फिर नाराज होंगे और धमकियां मिलेंगे और बच्चा नाराज होगा। इतने फुट फुट के बच्चे से लोग डरते हैं। जवान है आपसे बच्चा, उसको थप्पड़ मारे, अगर मैं नहीं कहती मारे जाके, लेकिन अगर मैं आपको समझा रही हूं कि अगर आप मुखलस हैं तो आपका बच्चा कभी आपको गलत चीज पे नहीं माइल करेगा। ये तो बड़ी ना जहालत की बात है कि हम अपने प्यारों को खुश करने के लिए चुप कर जाओ, बस अल्लाह को नाराज करके आती हूं। और आज तो अल्लाह रहम करे, हमारा तो कल्चर ये बन गया कि वो जैसे कहते हैं ना, आज नहीं करोगे तो कब करोगे। वो मैंने एक किसी जगह एक क्लिप देखा तो जिसमें वो बेटा और बाप आपस में बातें कर रहा था, तो जो यही कह रहा था, अब्बा शादी के मौके पे ये नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और इस मौके पे ये नहीं लेना तो कब लेना। जैसे हमारे यहाँ इस मौके पे हर चीज एक्सट्रीम पे चाहते हैं ना अच्छी हो। तो उसने कहा मुझे तो ये लग रहा है कि तू ये कह रहा है कि खुशी के मौके पे अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे तो और कब करेंगे। वमा ली अला अब्दुल्लज़ी फतरनी, अल्लाह हमारा दिल खोल दे, अल्लाह हमें मुखलस बना दे। ये बार बार हर दोपारे में ये नबियों के किस्से क्यों आते हैं और सलामुन अल मुरसलीन की बातें क्यों आती हैं, क्यों ये दुनिया में मुखलस बन के गए। देखिए हजरत नूह की किसी नमाज रोजे का जिक्र आपने नहीं पढ़ा, पर ये मुखलस थे, ये अपने वक्त में एक चट्टान बन के खड़े हो गए थे खराब गलत चीजों के आगे, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वजह क्या थी कि वो अल्लाह के आगे किसी को नहीं कुछ समझते थे, और यही असल बात है। अब एक और नबी का जिक्र, और नूह ही के तरीके पे चलने वाले इब्राहिम थे, जब वो अपने रब के हजूर कल्बे सलीम लेकर आए, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा ये क्या चीजें हैं जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, क्या अल्लाह को छोड़कर झूठ खड़े हुए माबूद चाहते हो, आखिर रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है। जरा सा रुकिए, क्या चीज आपको यहां नजर आ रही है? इब्राहिम की कौन सी तारीफ? कल्बे सलीम। कल्बे सलीम क्या होता है? सलामत दिल, मुतमईन दिल। आज की मेरी दुआ भी यही एंड पे पढ़ाते हैं आपको इंशाल्लाह। सलामत दिल वाले लोग अल्लाह के मामले में किसी से नहीं डरते। वमा ली अला अब्दुल्लज़ी फतरनी। कल्बे सलीम दूसरों को शिर्क करता हुआ देख ही नहीं सकता, क्योंकि वमा ली अला अब्दुल्लज़ी फतरनी। कल्बे सलीम मजबूर नहीं होता। कौम जा रही है पूजने किसी जगह मंदिर में, इब्राहिम खड़े हो रहे हैं, कैसे आइए देखिए। फिर उसने सितारों पर एक निगाह डाली और कहा मेरी तबीयत खराब है। क्यों? तौहीद वाले की तबीयत खराब हो जाती है शिरकिया और नाफरमानियों वाले कामों को देखकर। चुनाचे वो लोग इसे छोड़कर चले गए, उनके पीछे वो चुपके से अपने माबूदों के मंदिर में घुस गया और बोला, वो मंदिर में घुस गए और बोले आप लोग खाते क्यों नहीं? यदि उनको पता था नहीं खाएंगे, लेकिन उनकी बेबसी को जाहिर कर रहे हैं, क्या हो गया आप लोग बोलते भी नहीं। इसके बाद वो इन पर पिल पड़ा और सीधे हाथ से खूब जरबे लगाई। देखिए अकीदे का इजहार, एक वक्त हुआ बर्दाश्त करने का, फिर थक गए। वापस आकर वो लोग भागे भागे उसके पास आए और उसने कहा क्या तुम अपनी ही तराशी हुई चीजों को पूजते हो? देखिए अकल को हिलाने वाले सवाल, खुद बना के खुद पूजते हो, हालांकि अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया है और उन चीजों को भी जिन्हें तुम बनाते हो। या उम्मे सुलैम के वो जुमले याद आ गए जो उन्होंने अबू तलहा से कहे थे शादी से पहले, अबू तलहा तुम खुद लकड़ी का बुत तराशते हो और फिर उसको खुदा बना के बैठ जाते हो, पूजना है उस किसान को पूजो जिसने उस दरख्त का बीज डाला, कुछ तो किया, और अगर पूजना ही है तो उस बढ़ई को पूज लो कारपेंटर को कि जिसने इस बुत को तराशा, ये क्या कर सकता है। बस ये बात अबू तलहा के दिल में बैठी, अल्लाह ने ईमान दिया तो ईमान चुप नहीं रहता। हबीब की तरह आप भी बोले मत, बहुत मोहलत दे दी हमने खुद को और अपनों को। असल बात है कि तरीका ठीक रखे, इंटेंसिटी ठीक रखे, हिकमत के साथ उदु इला सबील रब्बी का बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, तो आप देखें कि तौहीद वाले की बात में असर बड़ा होता है। ये याद रखिए, सबसे बड़ी चीज जो आपकी बात में तासीर पैदा करती है ना, वो आपका ताल्लुक बिल्लाह। आप कहते ज्यादा पढ़ेंगे अच्छे टीचर बन जाएंगे, आप कहते ज्यादा किताबें पढ़ जाऊंगी बहुत अच्छी नसीहत करूंगी बच्चों को, फिर मेरे बच्चे तो मेरे मुंह से बात सुनकर मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। पहले आप अपना अल्लाह से ताल्लुक ठीक करें। अनपढ़ माओ को मैंने देखा है बेहतरीन मुबल्लिगा, बच्चे सुनते हैं आधी बात माँ की सुन के सीधे हो जाते हैं, तासीर आती है। अल्लाह हमें खालिस कर ले, अल्लाह अपना बना दे। खैर अब उन्होंने तो अपनी बात कहनी सी कह दी, उन्होंने आपस में कहा इसके लिए एक अलाव तैयार करो और इसे दहकती हुई आग के ढेर में फेंक दो। उन्होंने इसके खिलाफ एक कार्रवाई करना चाही मगर हमने उन्हीं को नीचा कर दिया। रुकिए जरा, अमूमन ये जो मौजू चल रहा है इस पे हम डर किस बात पे जाते हैं, लोग नाराज होंगे, बातें करेंगे, छोड़ देंगे, मियाँ तलाक दे देंगे, कोई नहीं देता, वो आपकी किसी और हरकत पे देगा तो देगा, इस पे कोई नहीं देता। लेकिन चलिए इस जुमले को अपने दिल पर ले, क्या आज तक हमारे लिए किसी ने आग जलाई है? क्योंकि देखिए इब्राहिम ने ये कार्रवाई की तो उन्होंने आग जलानी और फिर बादशाह से मशवरा करके इब्राहिम को आग में फेंका। हम तो इससे बहुत पहले ही हार चुके होते हैं, हम तो इससे पहले ही बिक चुके होते हैं। लेकिन इंजाम किसका अच्छा हुआ, आग जलाने वालों का या आग में डाले जाने वालों का? जो अल्लाह के नाम पे हक के लिए स्टैंड ले लेता है, अल्लाह उसको कभी शर्मिंदा नहीं करता, याद रखें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ, यानी आई विल टेक एडवाइस फ्रॉम हिम, मैं उससे गाइडलाइन चाहता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ मुझे अब आगे क्या करना है, वही मेरी रहनुमाई भी करेगा। अपने लिए नोट कर लें, जब ऐसा मौका आपकी जिंदगी में आए तो जाके जाए नमाज पे खड़े होकर के अल्लाह अब बता मैं क्या करूं, मैंने तो तेरे लिए ये काम किया था। और आज के इस पारे के थीम के साथ मुझे वो शेर भी याद आ रहा है जो सही नहीं आता लेकिन मैंने किसी एक बुजुर्ग के मुंह से सुना है बहुत, कि तौहीद तो ये है कि हश्र के दिन खुदा हश्र में ये कहते कि ये बंदा सारे जहां से नाराज है मेरे लिए, ये है वमारी अलाबुदुल्लजी फतरनी। मोमिन प्यार करता है, मोहब्बत करता है, केयरिंग होता है, बट वो कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होता, वो शिर्क नहीं करता लोगों को खुश करने के लिए, वो फिस्क नहीं करता, वो बेहयाई और बदकारी और फुखश में नहीं पड़ता लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि मुझे लोगों ने नहीं अल्लाह ने पैदा किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गाइडलाइन मांगी, अब क्या कह रहे हैं, ए परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो सालेहीन में से हो, रब्बी हबली मिनस सालेहीन। ये है आज की दुआओं में से एक दुआ, कि अल्लाह मुझे सालेहीन में से अता फरमा। नेक औलाद नेकियों में जमने में माविन होती है, एक अकेला दो ग्यारह, कि अल्लाह ये मेरी बात सुन नहीं रहे तो मुझे औलाद ही दे दे, कम से कम कोई तो हो जो मेरी बात सुने। और याद रखिए अपनी औलाद पे मान होता है, जितना मर्जी चाह लें आप स्टूडेंट्स को औलाद से बढ़कर, जब उनको नहीं परवाह होगी तो नहीं परवाह होगी। अपना बच्चा अगर उठ भी जाए दूर भी चला जाए वो कभी माँ बाप को पीछे नहीं करता। इब्राहिम ने कहा अल्लाह बेटा दे दे, क्यों मांगा, बुढ़ापे का साथी नहीं, सालेहीन, कि इस पुरफितन दौर में इस शिर्क की आलूदगियों को दूर करने में को मेरा घर से ही मुआविन आ जाए। जवाब सुनिए, इस दुआ के जवाब में हमने उसको एक हलीम बुर्दबार लड़के की बशारत दी। वो लड़का जब उसके साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया तो एक रोज इब्राहिम ने उससे कहा बेटा मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुझे जिबा कर रहा हूं, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा कौन थे वो, इस्माइल। और आज की हमारी काबिले तकलीद शख्सियत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे के रूप में, अल्लाह ऐसे बेटे हमें भी दे दे, पर शर्त है कि हमें ऐसे माँ बाप बनना पड़ेगा। जवाब सुनिए, या बते फल मा तू मर, अब्बा जी जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे कर डालिए, आप इंशाल्लाह मुझे साबिरों में से पाएंगे। आखिरकार जब इन दोनों ने सर तस्लीम खम कर दिया और इब्राहिम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया, माथे के बल क्यों गिराया, कि बच्चे की शक्ल देखकर छुरी हट ना जाए, हाथ ना कांप जाए। और हमने निदा दी या इब्राहिम कद सद्दक तर रोयल, ए इब्राहिम तूने ख्वाब सच कर दिखाया, कैसे बेटा तो नहीं जिबा हुआ पर तूने तो तैयारी पूरी कर ली थी। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, हाँ ये एक बड़ी आजमाइश थी। वफदई ना हो, और हमने एक बड़ी कुर्बानी फिदिये में देकर इस बच्चे को छुड़ा लिया और इसकी तारीफ और तौसीफ हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ दी। सलामुन अला इब्राहिम, सलाम है इब्राहिम पर। कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम बदनेकी करने वालों को ऐसी ही जज़ा देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था। वबशरनाहु बिइसहाक नबिय्यन मिनस सालिहीन, और हमने इसे इसहाक की बिशारत दे दी, पहला भी नहीं ज़िबा हुआ एक और बेटा दे दिया तोहफे में, क्योंकि जब बंदा कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है अल्लाह बचाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो दूसरा बेटा भी कैसा था, एक नबी सालेहीन में से, और इसे और इसहाक को बरकत दी। अब इन दोनों की जुर्रियत में से कोई मुहसिन है और कोई अपने नफ्स पर सरीख जुल्म करने वाला। थोड़ी सी बात करेंगे इस पे, कैसा घराना है, एक बेटा भी फरमा बरदार, दूसरा भी फरमा बरदार, क्योंकि बाप मवाहिता वमा लिया ला अबुदुल्लज़ी फतरनी पे बाप का दिल ठुका हुआ था। आप सूरत कहफ में भी ये मौजू सुन चुके हैं मेरे से भी कि औलाद में माँ बाप की नेकी का असर आता है। तौहीद वाले माँ बाप की जिंदगी में अगर उनके बच्चे उनकी आंखों की ठंडक ना भी बने ना, उनके बाप अल्लाह, उनके बाद अल्लाह उनको जरूर हिदायत दे देता है। ये अल्लाह की सुन्नत है। दूसरी बात देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे लगता है ऐसे मुस्लिम हो गए जैसे सूरज और चांद मुस्लिम थे। जिधर घुमाओ घुमा दिया, जब कहा निकलो निकल आए, जब कहा डूब जाओ डूब पड़े, जब कहा अब ये करो वो करो, बगैर सवाल के मानने वाला दिल है जिसको अल्लाह ने कहा कि अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। ये कल्बे सलीम है जो इताअत करवाता है। सवाल नहीं करो, तावीले नहीं करो, कुछ श्योरिटीज नहीं मांगो, होल हार्टेडली अल्लाह के हुक्म पे चलो। हाफ हार्टेडली जब हम अल्लाह के दीन पे चलते हैं ना मुखलस बनते हैं ना मवाहिद बनते हैं। और अल्लाह ताला आपको मुझे यही देखना चाहते हैं। सोचिए जरा, जब हम अल्लाह के पास पहुंचेंगे तो कल्बे सलीम के साथ आएंगे या टूटा हुआ दिल लेकर जाएंगे? अल्लाह ये थोड़ा बच्चों की मोहब्बत में टूट गया था, ये थोड़ा बस शौहर ने तोड़ दिया था, ये सास ने तोड़ दिया था, ये फलां दोस्त, ये बच बचा के लाया हूँ तेरे पास। नहीं, इल्ला मन्नतल्लाह बिकल्बिन सलीम। ये इब्राहिम की शान है, ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, ये अवार्ड सेरेमनी है। और आप यहाँ एक छोटी सी बात सुने, हर नबी के नाम के साथ आप पढ़ेंगे सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला नू। ये क्या है? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे कल्चर में कहते हैं 21 तोपों की सलामी, सल्यूट देते हैं ना। किसी को इज्जत देनी हो ना तो उसको फिर लोग इस तरह से, एक प्रोटोकॉल है बना हुआ। जिंदगी भर नबियों को इस काम की कोई खातर ख्वा जजा नहीं मिली, कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला, वो मजनू दीवाने काहिन हुए। अल्लाह ताला की आमद के दिन ये सल्यूट देगा जो अल्लाह के रास्ते में निकला और तकलीफें भी सही फिर भी खड़ा रहा, बातें भी सुनी फिर भी खड़ा रहा। अल्लाह की आमद के दिन सारी मखलूक में आएगा, कहेगा बुलाओ नूह को, सब कहो सलामुन अला मुरसलीन, सलामुन अला नूहिन। आज हमने नबियों के मिशन को छोड़कर उनकी जात में से क्या ढूंढा? यहां थोड़ी सी बात करूंगी। अभी तक माशाल्लाह 23वें पारे तक आप कई दफा अंबिया कराम के किस्से पढ़ चुके हैं ना, और आपने 30वें पारे में भी पढ़ने हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, हर जगह आपको एक नई ताजगी मिलेगी। पूरे कुरान पाक में कहीं नबियों की बर्थडे का जिक्र आया अभी तक? और मेरी बात पर अगर यकीन कर लें तो आगे भी नहीं आना। कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, सितारे उस वक्त किस में थे, क्या था, आया नहीं आएगा। जाती इबादत का भी बहुत कम तस्करा है। सब जगह जिस चीज का तस्करा है, वमा लिया ला अबुदुल्लज़ी फतरनी, तौहीद कलम लेकर खड़े हुए अपने दौर के कुफर और शिर्क के जहालत के अंधेरों में, ये है असल में आपका मेरा काम। अगर वक्त के माहौल में ही रंग जाते, रंग में रंग जाते लोगों के, वो कहते हैं ना लिव इफ यू आर इन रोम लिव लाइक रोमन्स, कहते हैं ना रूम में जाओ तो रूमी बन जाओ, क्योंकि जो वो कह रहा है जैसा देश वैसा भेस। अगर नबी जैसा देश वैसा भेस और वक्त के रस्म और रिवाज से डरे तो इतने उनको गार्ड ऑफ ऑनर्स मिलते? ये है असल में इस बारे का थीम। बड़ी कुर्बानी कब करता है बंदा? जब अल्लाह की बड़ाई का एहसास होता है। आज हम नबियों की जात में खो गए, उनकी बर्थडेज में खो गए, उनके मिशन को भूल गए। अल्लाह हमारी भी इसलाह फरमा दे। और दूसरी बात देखिए कि नबियों ने जिन हालात में ये दीन का काम किया है ना, वो हालात हमसे, जो आज के हमारे हालात हैं, उससे कई गुना अबतर हालात हैं। लेकिन किसी जगह उन्होंने ना औलाद को वजह बनाया और ना खानदान को वजह बनाया। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें कल्बे सलीम वाला बना दे। और मोहब्बत से कहिए कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहिम। जहां भी इब्राहिम का तस्करा आता है, आप देखिए इसमें अमल की इतनी ज्यादा बातें हैं कि जिसको आज मैं और आप अगर अपने लिए ले लें तो हमारी भी जिंदगी के दिन अच्छे गुजर जाएं। आगे हजरत मूसा और हारून का जिक्र। और हमने मूसा और हारून पर एहसान किया, इनको और इनकी कौम को कर्ब अजीम से निजात दी। यहां कर्ब क्या था? फिरौनी तसल्लत, गुलामी का कर्ब। बहुत बुरा होता है, अल्लाह आज की उम्मत को भी गुलामी से निकाल दे। इन्हें नुसरत बख्शी जिसकी वजह से वही गालिब रहे, इनको नहायत वाज़े किताब अता की, इन्हें राह रास्त दिखाई और बाद की नस्लों में इनका जिक्र खैर बाकी रखा। ये है असल में जिक्र खैर। इसकी दुआ करें कि अल्लाह तो हमारा जिक्र खैर कर दे। आप देखिए कि अल्लाह सुबहान ताला बाद में आपका अच्छा जिक्र करे, ये इससे बेहतर है ना, इससे बेहतर है ना कि आपकी जिंदगी में दुनिया आपकी तारीफ करे फिर वापस आ जाइए पारे पे। यही मेरा और आपका इम्तिहान है। हम लोगों में खोए रहते हैं, लोगों की तारीफ और तनकीद का डर अल्लाह की इताअत का शौक खत्म कर देता। चलिए मान लीजिए, छोड़ें अल्लाह की बात को, जरा सा पीछे कर दें, अल्लाह अपना जाके रात को दो नफिल पढ़ के रो के मनवा लूंगी, अभी लोगों को खुश करती हूँ। करें ठीक है, लोगों को खुश किया आखिर कितने दिन, आज किया, क्या अब हमेशा के लिए हो गए? नहीं, कल जरा सी उनकी मर्जी से इधर से उधर होके देखें, नाराज हो जाएंगे। अल्लाह को राजी कर लिया, लोग नाराज हो गए कितने दिन, और आपको मैं पूरा यकीन दिला सकती हूं जिसको अल्लाह के लिए आज नाराज कर रहे हैं कल वो जरूर आपसे राजी होगा। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला मोहब्बतें पैदा कर देता है। चंद हदीस आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये जो लिसान ना सिदकें और बाद में जिक्र खैर है ना, ये आपके मेरे लिए बड़ा अहम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी बंदे से राजी होता है तो उसे लोगों के बीच में नेक शोहरत वाला बना देता है। सहाबा को समझ ना आया, कहा अल्लाह के नबी जिंदगी में ही एक बंदा लोगों के अंदर नेक शोहरत वाला कैसे हो जाता है? फरमाया उसकी मौत से पहले उसे नेक कामों की तौफीक देता है और फिर सबको उससे राजी कर देता है। क्या पता चला कि अच्छे काम अच्छे तस्करों का जरिया बनते हैं। आज आप अल्लाह का हुक्म सुनते हैं, एक और चीज जिस पे शायद आपने गौर किया कि नहीं, वो भी कर लें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में अल्लाह का हुक्म सुनकर अमल के लिए तैयार हो गए। हम अल्लाह की किताब में हुक्म पढ़कर भी सोचों में पड़े रहते हैं, हम अल्लाह के भेजे हुए नबी की सूरत में बातें देख सुनकर भी सोचों में पड़ते हैं, तो ये होते हैं मोहसिन। मोहसिन कौन है? ख्वाब में भी अल्लाह का हुक्म सुन ले तो मानने को तैयार है। और याद रखिए, हम में से हर एक का एक मुकाम है। रिवायत से पता चलता है कि हर बंदे का आसमानों में एक मुकाम होता है, वही दुनिया में मशहूर हो जाता है। अगर आपका मेरा नाम आसमानों में अच्छा है ना, फरिश्तों में, अल्लाह की जात, इर्द गिर्द, आगे हम पढ़ेंगे इन द मलिक इन मुक्तदिर में, तो वही मुकाम आपका मेरा दुनिया में आम हो जाता है। और अगर अल्लाह ना करे वहां कोई हमारी बुराइयां हो रही हैं तो दुनिया भी हमारी बुराइयां शुरू कर देती है। क्या आपके दिल में हर बंदे का कोई मुकाम नहीं है? आप 10 लोगों का तस्वुर लाएं, दोस्तों में, माँ बाप में, रिश्तेदारों में, दूर करीब के खानदान में, हर नाम के साथ दिल में एक फर्क आता है। कुछ के साथ तो ऐसे दिल मोहब्बत से टपक पड़ता है जैसे शहद टपके, और कुछ का तस्वुर ही आपको कड़वा कर देता है। इसी तरह याद रखिए, आपका मेरा मुकाम अल्लाह की निगाहों में भी है। अल्लाह अकबर। हम अपने आमाल से ज्यादा अपने अखलाक से पहचाने जाएंगे, तो लिहाजा दूसरों की ज्यादतियों पर शिकवे करने की बजाय मोहसिन बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की एक रिवायत का खुलासा है, फरमाया कि करीब है कि तुम जन्नत वालों को जहन्नुम वालों से दुनिया में ही पहचान लोगे। यानी कल आपने मैंने किधर जाना है ये तो कल की बात है, दुनिया में पता चल जाएगा। सवाल पैदा हुआ, ये कैसे? अल्लाह के नबी, दुनिया में हम कैसे पता चले? फरमाया तारीफ करने से और बुराई करने से। कैसे? कि अल्लाह दुनिया में तारीफें जारी कर देगा जन्नतियों की, और दुनिया में ओए तो ओए होने लग जाएगी जहन्नुम में जाने वाले की, और फरमाया तुम में से बास जमीन पर अल्लाह के गवाह हैं। अल्लाह अकबर। ये बड़ी बात है, याद रखिए। अपने लिए चंद मुहासबे के नुक्तों को बाद आगे चलें, अपने ऊपर ले, अपना नाम लिखे और अपने हर रिश्ते को लिखे। मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचती है? यानी मेरी माँ की निगाहों में मेरा क्या मुकाम है? मेरी बहन मेरे बारे में हकीकत में क्या सोचती है? मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं? और अगर हमने उनकी सही तरबियत की है, और मेरे शौहर मेरे बारे में, और मेरी सास और मेरी नंदें, और मेरे दूर पार के रिश्तेदार और मेरी दोस्तें मेरे बारे में क्या सोचती हैं, ये जिस दिन आपको समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, उसके बाद बात बड़ी आसान होगी। हम जो असल में होते हैं हमें वही मिलता है। ये हमारा दोगलापन है जो हमें दूसरों से बातें भी सुनवाता है, कभी तारीफें कभी तनकीद, कभी हम कहते चल झूठी चल सच्ची। आप फोकस्ड हो जाएं बस, फिर देखिए जो लोग आज आपकी बुराई कर रहे हैं ना, कल वो आपकी तारीफ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह हमारा भी जिक्र खैर बाकी रखे। सलाम है मूसा और हारून पर, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं, दर हकीकत वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। अल्लाह हमें भी मोमिन बना दे। और इलियास भी यकीनन मुरसलीन में से थे। याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग डरते नहीं हो, क्या तुम बाल को पुकारते हो और अखसनुल खालिकीन को छोड़ देते हो। देखिए क्या पैगाम है, वमाली अला अबुदुल लजी फतरनी। हजरत इलियास जिनका नाम कभी कभी आता है कुरान में, वो भी लोगों को तौहीद सिखा रहे हैं। हम कहते हैं तौहीद की बातें ना करो, लड़ाई होती है, लोग माइंड करते हैं। और आज यकीन कीजिए लोगों को तौहीद और फिक, सॉरी अकीदे और फिक का फर्क भी नहीं पता, फिकी बातों को लोग अकीदा बना लेते हैं। किसी ने मुझे ऐसी कोई बात पूछी, पहले की बात है, तो कहने लगे कि अच्छा आप दौरे कुरान कराते हैं, किस फिक से कराते हैं। तो मैंने एक जुमला आने से पहले भी रटाया था कहीं जगह पे, मैंने कहा दौरे कुरान का कोई मसलक नहीं होता। आज तक आप देखिए 23 पारे पढ़े हैं, आपने कोई फिकी बात सुनी? कितनी नमाज की रखते हैं सजदा, हाथ किधर बांधो, औरत कैसे नमाज पढ़े, मर्द किधर, कभी सुना आपने आज तक? क्या जरूरत है इसकी? आप अल्लाह से ताल्लुक ठीक कर लें, इल्म ले लें, आपको खुद ही मिल जाएगा। कई लोग सिर्फ इस सोच के साथ नहीं आते कि पता नहीं अकीदा क्या, पता नहीं उनकी सोच क्या, पता नहीं कौन सा कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह के बंदो बर्दाश्त करो, खैर को चुनो। कभी आप असलाफ का जिक्र तो सुन के देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहती, और ले भी लूंगी तो मुझे उम्मीद है कि आप में से एक आध कोई पता होगा, वरना नहीं पता होगा। ऐसे ऐसे मशहूर मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन हैं जिनके नाम आज हमारी तफसीरों में, लेकिन उनके अंदर कई किस्म की कमियां थी। हमारे असलाफ ने क्या किया, उनकी खैर ले ली छांट के और उनकी बातिल चीजों को पीछे डाल दिया। क्यों? खैर ले लीजिए, वरना तो आप कभी दुनिया में काम कर ही नहीं सकते। लेकिन लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे या तो रुक जाते हैं, और अगर चलते भी हैं तो शक से भरे हुए दिल पे। कम से कम इस बारे पे दुआ कीजिए अल्लाह कल्बे सलीम बना दे, तरद्दुद खत्म कर दे दिल से। आप इसी सोच पे मरूं जिस पे तूने मुझे डाल दिया है, कब तक तजुर्बे करते फिरेंगे। और देखिए हजरत इलियास क्या कह रहे हैं, तुम लोग डरते नहीं हो, ये भी एक नुकता है, अल्लाह का खौफ दिलाएं अपना नहीं। क्या तुम बाल को पुकारते और अहसनुल खालिकीन को छोड़ देते हो? इस अल्लाह को जो तुम्हारे और तुम्हारे अगले पिछले अबा उजदाद का रब है, वही सोच है जो हबीब की थी। लेकिन जवाब भी देखिए, मगर उन्होंने इसे झुटलाया, सो अब यकीनन वो सजा के लिए पेश किए जाने वाले हैं, सिवाय इन बंदगाने खुदा के जिनको खालिस किया गया। अपने लिए दिल की गहराई से दुआ करें, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन में मुझे शामिल कर दे। स्ट्रिंजी हो जाए, कंजूस हो, इस वक्त किसी के लिए ना मांगे, 3 सेकंड सिर्फ अपने लिए मांगे। और कभी कभी ये बुखल करना पड़ता है, क्योंकि हम दूसरों की बड़ी फिक्रें करते हैं, अपने आप को खुला छोड़ते हैं। तो मांगिए अपने लिए कि अल्लाह मुझे मुखलिस बना दे। और लूत को भी इन्हीं घर लो और इन और लूत भी इन्हीं लोगों में से थे जो रसूल बनाकर भेजे गए। याद करो जब हमने इनको और इनके घर वालों को निजात दी, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी, बाकी सबको तहस नहस कर दिया। आज तुम शब रोज इनके उजड़े दैयार से गुजरते हो, क्या तुमको अकल नहीं आती? हजरत लूत अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सके? बीवी का अकीदा खराब था। अकीदा क्या था? अपने खानदान से डरती थी। आप पढ़ के देख लीजिए इनके वाक़यात। कभी नबी की बीवी जानिया नहीं हुई, और मुशरिका हो तो हो अलग बात है, लेकिन हजरत लूत की बीवी की जो बात आपको मुझे मिलती है रिवायात से, खानदान की मोहब्बत बड़ी थी, गैर कौम की थी ना। तो कौम में जब होमोसेक्सुअलिटी का मादा आया ना, तो हजरत लूत के घर में कोई आता, यानी उसी के अपने घर में आता, तो घर की छत पे जाकर एक झंडी लड़ा देती, कोई झंडा लगा देती, जिसको देखकर घर के वो जो बस्ती के लोग थे वो लहराते हुए आ जाते कि इस घर में कोई मर्द है और हम इनसे बुराई करें। यानी उस औरत की हमदर्दियां शौहर के साथ नहीं थी। अल्लाह ताला हमें इबरत लेने वाला बना दे। और यकीनन यूनुस भी रसूलों में से थे। याद करो जब वो एक भरी कश्ती की तरह भाग निकले, फिर कुरानदाजी में शरीक हुए और इसमें मात खाई, आखिरकार मछली ने उन्हें निकल लिया और वो मलामत ज़दा थे। अब अगर वो तस्बीह करने वालों में ना होते तो रोजे क्यामत तक इसी मछली अगर वो तस्वीर करने वालों में ना होते तो रोजे क्यामत तक इस मछली के पेट में रहते। इमेजिन कीजिए, मछली यूनुस की कब्र बन जाती, तभी क्यामत तक रहते। आखिरकार हमने इन्हें बड़ी बीमार हालत में एक चटियल मैदान पर फेंक दिया और उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया, और इसके बाद हमने उन्हें 1 लाख या इससे जायद कुछ लोगों की तरफ भेजा। वो ईमान लाए और हमने एक खास वक्त तक उनको बाकी रखा। ये है 1.25 लाख की दलील जो हमारे इंडो पाक कल्चर में है आयत क्रीमे के साथ, कि 1.25 लाख लोगों की तरफ पहुंचे, हमने अपनी अकल इस्तेमाल की। वो कलमा जो एक दफा नदामत के एहसास और यकीन के साथ पढ़ा जाए कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, तो वो अल्लाह की मदद को ले आता है। हम 1.25 लाख दफा पढ़वाते हैं फिर भी कहते हैं हुआ कोई नहीं काम, चलो कोई बात नहीं। और दोस्तों की मुश्किल 8-10 कुरान पढ़ने के बराबर है 1.25 लाख कलमा। 6,000 को तकसीम कर लीजिए 1,25,000 पे, अभी फिगर पता चल जाएगा कि जो 1.25 लाख दफा आयत करीमा पढ़ता पढ़ाता है वो 25-30 कुरान पढ़ चुका होता है। ना खुशू ना खुदू, दही बल्ले बन रहे, पकौड़े बन रहे, पिज्जा, और आप किचन में काम कर रहे हैं और आपकी दोस्तें आपके लिए काम कर रही हैं। अगर इतनी देर में सिर्फ ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन का तर्जमा तफसीर और इसका पढ़ने का तरीका और तदब्बुर सिखाया होता तो इंशाल्लाह आपके नहीं वो सारी दोस्तों के गम दूर हो सकते थे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि शौरी मुसलमान बनाए। लाशौरेपन पे ये काम होते हैं, याद रखिए जो ये लोग काम करते हैं मुझे कभी नहीं बुरे लगे, कभी नहीं गुस्सा आता उन पे, बस दुआ निकलती है कि इतनी मेहनत करते हैं उनको कभी तो कुरान का ये पैगाम पहुंचे कि जो एक दफा दिल की दुनिया को बदल दे तो कोई और चीज दिल को अच्छी ही नहीं लगती। फिर जरा इन लोगों से पूछो, क्या इनके दिल को ये बात लगती है कि तुम्हारे रब के लिए तो हों बेटियां और हों इनके बेटे, क्या वाकई हमने मलाइका को औरतें ही बनाया? ये आंखों देखी बात कह रहे हैं, खूब सुन रखो, दरअसल ये लोग अपनी मन घड़त से ये बात कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, और फिर वाकई ये झूठे हैं कि अल्लाह ने बेटों की बजाय अपने लिए बेटियां पसंद कर ली। तुम्हें क्या हो गया है, कैसे हुक्म लगा रहे हो, क्या तुम्हें होश नहीं आता, या फिर तुम्हारे पास अपनी इन बातों के लिए कोई साफ सनद है तो लाओ अपनी वो किताब अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने अल्लाह और मलाइका के दरमियान नस्ब का रिश्ता बना रखा है। नाउज़ुबिल्लाह, अरबों में एक कबीला ऐसा था जो कहता था कि जिन्नों के साथ अल्लाह की शादी हुई उसके नतीजे में फरिश्ते पैदा हुए। नाउज़ुबिल्लाह, ये मन घड़त बातें हैं सारी। हालांकि फरिश्ते या मलाइका खूब जानते हैं कि ये लोग मुजरिम की हैसियत में पेश होने वाले हैं, और वो कहते हैं अल्लाह इन सिफात से पाक है जो इसके खालिस बंदों के सिवा दूसरे लोग इसकी तरफ मंसूब करते हैं, बस तुम और तुम्हारे ये माबूद अल्लाह से किसी को फेर नहीं सकते मगर सिर्फ इसको जो दोजख की भड़कती हुई आग में झुलसने वाला हो। और हमारा हाल तो ये है कि हम में से हर एक का एक मुकाम मुकर्रर है, फरिश्तों की भी ड्यूटियां लगी हुई हैं। जिब्राइल का काम मीकाईल नहीं करते, इसराफील का काम इसराइल नहीं करते, इसी का इजहार कर रहे हैं डिसिप्लिन। ये है सूरत सोफात का मैसेज, सोफात डिसिप्लिन पे काम होंगे कोई किसी को बदर नहीं करेगा, और अपना काम छोड़कर दूसरे की खिदमत करने लग जाना ना उसका काम अच्छा होगा ना आपका। और हम सफ बस्ता खिदमतगार हैं और तस्बीह करने वाले हैं, अपने लिए दुआ करें अल्लाह हमें भी सफ बस्ता दीन के खिदमतगार बना दे और तस्बीह करने वाला बना दे। अब सूरत का एंड है। ये लोग पहले तो कहा करते थे कि काश हमारे पास वो जिक्र होता जो पिछली कौमों को मिला था, यानी ख्वाहिशें करते थे हमारे पास भी कोई जिक्र हो तो क्या होगा, लकुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन, तो हम तो अल्लाह के चीदा बंदे होते। मगर जब वो आ गया तो उन्होंने इसका इनकार कर दिया। दुआ करें अल्लाह में इनकार करने वालों में नहीं इकरार करने वालों में बना दे। अब अन करीब इन्हें इस रविश का नतीजा मालूम हो जाएगा। अपने भेजे हुए बंदों से हम पहले ही वादा कर चुके हैं कि यकीनन इनकी मदद की जाएगी, खुश हो जाए। अल्लाह की बातों पे किसको यकीन है, सबको है। तो अल्लाह ताला की ये बात अपने दिल की तख्ती पर लिख लीजिए, इन्नहुम लहुमुल मंसूरून। यकीन कीजिए इस बात का कि वमा लिया ला अबुदुल्लज़ी, एक दफा अल्लाह को ये साबित कर दें फिर अल्लाह देखिए अपनी मदद से कितनी मोहरें सब्त करेगा इंशाल्लाह। और हमारा ही लश्कर गालिब होकर रहेगा। पस ए नबी, जरा कुछ मुद्दत तक इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और देखते रहो, अन करीब ये खुद भी देख लेंगे क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। जब वो इनके सहन में उतरेगा तो वो दिन इन लोगों के लिए बहुत बुरा होगा जिन्हें मुतनब्बेह किया जा चुका। अल्लाह हमारे घरों पे अपना अजाब ना डालना। बस जरा इन्हें कुछ मुद्दत के लिए छोड़ दो और देखते रहो, अन करीब ये खुद देख लेंगे। सारी सूरत में नबियों की कौमों और उनके अजाब का इतना तस्करा था कि आखिर में वो आयतें आ गईं जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, किसी महफिल में की लोकाल होती है, कोई बातचीत होती है, एंड पे अगर ये जुमले पढ़ लिए जाएं तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देता है और जो भी नेकी का काम अगर उधर होता है तो उसको कबूल करता है। वो क्या है, सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तेरा रब, इज्जत का मालिक इन तमाम बातों से जो ये लोग बना रहे हैं, और सलाम है रसूलों पर, और सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो फिर कहिए, वमा ली अला अबुदुल लजी फतरनी, जब सारी तारीफ है उसके लिए तो फिर मैं उसकी बात क्यों ना मानू। अल्लाह ताला हमारे दिल खोलते हैं। या नमाज के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن
شكرا يا رب شكرا يا رب
يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن
شكرا يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب
أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب
شكرا يا
خالق الأكوان يا ربي يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا
شكرا يا رب
يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمن أكرمني بالغفران
شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب
نور يا ربي دربي
شكرا
واستر يا ربي عيبي
شكرا
واغفر يا ربي ذنبي
شكرا
دوما يا رب دايم مدى الزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب
شكرا يا رب
دايم مدى الزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب
هديت قلبي شكرا دورت دربي شكرا شكرا يا رب.
شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين.
شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين
وأمن حياتي
وخير الدليل
إذا تهت يوما
مع الحائرين.
فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء المبين.
سيبزغ منه الضياء المبين. فيا رب نور به دربنا وثبت به في فؤاد اليقين.
فإني عليل أقاسي الكروب طريح بسجن الهموم رهين.
طريح بسجن الهموم رهين. طريح بسجن الهموم رهين.
فمن علي أيا راحمي فما لي سواك إله معين.
فما لي سواك إله معين. فما لي سواك إله معين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قطعات سے شروع ہونے والی ایک سورت ہے. اس میں بھی ہم حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان کے کچھ واقعات دیکھیں گے. اور یہاں بھی بالکل پچھلی سورتوں کی طرح آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو اپنے دور کے چنے ہوئے نبی تھے چنے ہوئے انسان تھے ان کو کن قسم کے حالات سے گزرنا پڑا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا کتنا ذکر خیر قرآن پاک میں رکھا. بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی, قرآن کی قسم اللہ کھا رہا ہے کسی بات کو ثابت کرنے پہ, اس سے قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. اس کو ہائی لائٹ کرے, عزت و شقاق, یہ ہے انا ایگو. قرآن کا سب سے پہلا اثر جو انسان پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو دباتا ہے دباتا ہے اور دباتا ہے, اور ایسے انا کب جھوس نکل جاتا ہے کہ انسان بندگی کی منہ بولتی تصویر دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا تذکرہ ہم سنتے ہیں, کسی حکم کو انہوں نے انا کا ایشو نہیں بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں بھیجے گئے تھے وہاں جو لوگ دین سے دور رہے ان میں سے اکثریت کی وجہ ضد اور تکبر تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے مگر وہ وقت بچنے کا نہیں. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا بھی خود انہی میں سے آ گیا. منکرین کہتے ہیں یہ ساحر ہے, سخت جھوٹا ہے, کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہاں نوٹ کریں, بتوں کو پوجنے والے تو اتنے سٹبن اور اتنے جمے ہوئے اپنے معبودوں پر, اور ایک رب کو اس کی ساری حقیقتوں کے ساتھ پانے والا پھر اس کی بات پہ دوسروں کو ترجیح دے. یہی تو اصل میں انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے. یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے, شک کر رہے ہیں اللہ کے نبی پہ. یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی, یہ بھی ایک ایشو تھا. یہ نئی باتیں ہیں, پہلے تو کبھی نہیں سنی. یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے آغاز میں اپنے اوپر بات کی, لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ اپنے پیاروں کو بھی بتائیں تو آپ نے اپنے خاندان کی ایک دعوت کی. اور یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے کھانا پکا کر دوسروں کو دین کی بات سنانا تاکہ پیٹ کے رستے ہو سکتا ہے کہ ہدایت کی طرف چل پڑے. جب سب وہاں بیٹھے سب کچھ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنا پیغام دینا چاہا کہ لوگوں ایک اللہ کو مانو, اور وہی بات وما لی علی عبد اللذی. یہ بات سن کر جو آپ کے سردار نما چچا اور خاندان کے بڑے تھے وہ پاؤں پٹکتے ہوئے چلے گئے. اسی منظر کو آپ نے یہاں پڑھا ہے کہ سردار وہاں سے غصے میں چلے گئے. آپ کے میرے لیے اس میں سوچ کا نقطہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے بڑوں کو بھی پیغام پہنچایا؟ بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن خاندان کے بزرگ غلط طریقوں پہ, نہ لاعلمی کی وجہ سے کوئی غلط رسم کرتے ہیں, کوئی غلط طریقہ دین کے نام پہ اختیار کیے ہوئے ہیں, تو کوشش کرنی چاہیے باعزت طریقے سے, اچھے طریقے سے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسانی کر دے. دوسری بات, صحابہ کیوں مان گئے؟ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. قریب رہنے والے رشتے دار, خون کے بھی رشتے تھے, وہ تو ایگو اور انا کا شکار ہو گئے, تکبر اور ضد میں آ گئے. صحابہ کا کیا مسئلہ تھا؟ لکھیے ایک جملہ. آپ کا بیسٹ ہدف وہ شخص ہیں جس میں سیلف امپورٹنس کا احساس نہ ہو. انا کی دیوار اتنی موٹی ہوتی ہے کہ بات سمجھ کے بھی لوگ نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں کبھی سیلف امپورٹنس پیدا نہیں ہونے دی. بڑے سے بڑا کارنامہ بھی کوئی کر کے آتا نا تو دعا دیتے, اسلام کے غلبے کی بات کرتے, کبھی پیار سے بات کرتے, لیکن منہ بھر بھر کے اپنے تعریفیں نہیں کی. آج دیکھیں شروع سے ہم اپنے بچوں کی انا کو بہت ابھارتے ہیں, یہ عزت اور شقاق پہ بات ہو رہی ہے. بچوں کو ضدی ہم خود بناتے, اپنی بات منوانے والا ہم خود بناتے, خود برستی سکھاتے, خود اعتمادی کے نام پہ بدتمیز کر دیتے, سیلف کنٹرول ہم ان کا خود ختم کر دیتے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے, آپ کے ساتھ رہنے والے دین میں آگے بڑھتے جائیں تو آپ سب سے پہلے ان سے انا کو نکال دیں. انا کی موجودگی میں نیکیاں نہیں پھلتی پھولتی. ये ऐसा दीमक है कि जो नेकियों की खड़ी फसल को भी तबाह कर देता है, क्योंकि जो गलती ना माने वो रिश्ते नहीं निभा सकते, वो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कैसे निभाएंगे। तो उन्होंने देखिए डटने की बात की है गलत पे, अल्लाह हमें सही पे डटने वाला बना दे। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये सरदारों का जो असल मसला है ना वो ये नहीं है जो ये कह रहे हैं, बल्कि असल मसला इनका क्या है, असल बात यह है कि मेरे जिक्र पर ये शक कर रहे हैं, शक। और ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे अजाब का मजा नहीं चखा। अभी इनको शिद्दत का एहसास नहीं है कि अल्लाह जब पकड़ता है तो कैसे पकड़ता है। क्या तेरे दाता और गालिब रब की रहमत के खजाने इनके कब्जे में, क्या तेरे दाता और गालिब क्या तेरे दाता और गालिब रब की रहमत के खजाने इनके कब्जे में हैं, क्या ये जमीनों आसमान और इनके दरमियान की चीजों के मालिक हैं। अच्छा तो ये आलम इसबाब की बुलंदियों पर चढ़कर देखे, शऊर बेदार करने वाला मामला है। ये तो जत्थों में से एक छोटा सा जत्था है, यानी गिरोह जो इसी जगह शिकस्त खाने वाला है। इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाले फिरौन और समूद और कौमे लूत और एका वाले झुटला चुके। जत्थे वो थे जिनमें से हर एक ने रसूलों को झुटलाया और मेरी अकूबत का फैसला इन पर चश्मा होकर रह गया। ये लोग भी बस एक धमाके के मुंतजर हैं जिसके बाद कोई दूसरा धमाका ना होगा। आपको अभी तक की सूरतों में कोई फर्क नहीं दिखा होगा, क्यामत, मुमारी, रसूलों का जुटलाना, बात वो हबीब से शुरू हुई थी और यहाँ तक पहुँच के देखिए मक्का वालों का मौका बनाकर ये बात समझा दी गई कि जिसके दिल में अपने आप को कुछ समझने का एहसास होगा वो कभी हिदायत नहीं पाएगा चाहे वक्त का नबी उनके सामने आकर खड़ा हो जाए। वकालू रब्बना जिल्लना कित्तना यक़बल यौमिल हिसाब, और ये कहते हैं हमारे रब यौम हिसाब से पहले ही हमारा हिस्सा हमें जल्दी से दे दे, यानी जो अजाब आना है अभी आ जाए। ऐ नबी सब्र करो इन बातों पर जो ये लोग बनाते हैं, और इनके सामने हमारे बंदे दाऊद का किस्सा बयान करो जो बड़ी कुव्वतों के मालिक थे, हर मामले में अल्लाह की तरफ रजू करने वाले थे। इसको हाईलाइट करें, इन्नहुवा, कौन सी चीज है जो अल्लाह को सबसे अहम बनाती है हमारी जिंदगी में, अवाब होना, पलट पलट कर अल्लाह की तरफ तवज्जो जाए। याद रखिए बड़े काम करने के लिए ज्यादा वाप होने की जरूरत होती है, बार बार फैसले करने पड़ते हैं, बार बार इस्तखारे, बार बार मशवरे, क्या करूं क्या ना करूं। अब सर को अल्लाह के आगे झुका दीजिए और ये कह दीजिए कि अल्लाह तू मेरे से सही काम ले ले। आप देखिए कि दाऊद अलैहिस्सलाम अपने वक्त के नबी भी थे और बादशाह भी थे, लेकिन अवाब होने की सिफत ने उनको इतना फायदा दिया कि जिंदगी में जब कोई दुराहा आया उन्होंने रब से पूछा और रब ने फिर उनको गाइड भी किया। हमने पहाड़ों को इनके साथ मुसखर कर रखा था कि सुबह शाम वो इनके साथ तस्बीह करते थे, परिंदे सिमट आते, सब के सब उसकी तस्बीह की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। अवाब की जुबान से जो बात निकलेगी लोग जरूर मुतवज्जे होंगे। और हजरत दाऊद को अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत आवाज दी थी, जब वो जबूर की तिलावत करते तो इर्द गिर्द से उड़ते हुए परिंदे भी उनके पास आ जाते। हमने उनकी सल्तनत मजबूत कर दी, उनको हुक्म अता, उनको हिकमत अता की, अल्लाह हमें भी अता कर दे, और फैसला कुन बात कहने की सलाहियत बख्शी। इसको हाईलाइट करें, फैसला कुन तबलीग होनी चाहिए, आपकी बात सुनकर सुनने वाला और कंफ्यूज ना हो जाए। ओके ये भी ठीक तो वो भी ठीक, कुछ ये कहते कुछ वो कहते, ये भी कर लो, नहीं सीधी बात, कुल कौलन सदीदा, और सीधी बात यह कि वह माली अलाबुदुल्लज़ी फ़तरनी। जब अल्लाह का हक जिंदगी में बंदा महसूस करता है ना उसके बाद बात सीधी कहने की तौफीक मिलती है, और बड़े खुशकिस्मत है वो लोग जिनको सीधी बात कहने वाला कोई मिल गया, वरना लोगों ने तो आज बातों में उलझा कर इंसानियत को अल्लाह से भी बदगुमान कर दिया और रसूल से तो पहले से ही थे। फरमाया फिर तुम्हें कुछ खबर पहुंची उस उन मुकदमे वालों की जो दीवार चढ़कर उनके बाला खाने में घुस आए थे। जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो इन्हें देख कर घबरा गए, उन्होंने कहा डरिए नहीं, हम दो फरीक के मुकदमा हैं जिनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की। ये डरे क्यों, अचानक घर में आप बैठे अपने कंप्यूटर डेस्क पे काम करें और एकदम दीवार से कोई फलांग के अंदर आ जाए, डरेंगे नहीं। इससे पता चलता है कि नबी गैब नहीं जानते थे कि ये आने वाले इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 یعنی 99 دمبیاں یعنی شیپ ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے۔ اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا۔ اور واقعہ یہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجیے، اصل عمل کی بات یہ ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ، سوچیں پھر پڑھیں، مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں۔ ہاں لیکن ایسے لوگ قلیل ما ہم، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کا ادراک وہی کر سکتا ہے جو کسی کے ساتھ مل جل کر رہتا ہو۔ یاد رکھیے، انسانوں کی اس دنیا میں میرا آپ کا ایک امتحان ہے، کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ۔ کسی کو کوئی ایسی خوبی مل جاتی ہے جو دوسروں کی نظروں میں آ جاتی ہے، کسی کو ایسی مل جاتی ہے جو نہیں نظر آتی۔ سورت کے شروع میں عزت و شقاق کی بات کر کے بتا دیا کہ جو انا پرست نہیں ہوگا، سیلف رائٹیسنس کا اس کے اندر جذبہ نہیں ہوگا، اپنی ذات کو نمایاں کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گاڑی چلتی رہے، چاہے اندر بونٹ میں لگا ہوا ایک تار ہوں جو انجن کو بیٹری سے ملاتا ہوں، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نہیں رہوں گا اپنی جگہ پہ تو گاڑی رک جائے گی۔ اس کو فرنٹ پہ سٹیرنگ ہاتھ میں پکڑ کے بہت بڑی سکرین کے اوپر بیٹھنا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، بٹ اپوزٹ شخص پھر زیادتیاں کرتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ زیادتیوں سے بچائے۔ آپ دیکھیے کہ شراکت کاروبار میں بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ انسان دو لوگوں کے بیچ میں آتا ہے تو مسئلہ آتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ایک ڈش ہے، 10 کباب کسی نے آپ کے سامنے رکھے، کیونکہ کھانے والے 8 تھے، 2 انہوں نے ایکسٹرا رکھ دیے، کوئی آ بھی سکتا ہے، اور آپ کو باری مل گئی، لائن میں پہلے لگ گئے، تو آپ نے تو 4 کباب پہلی پلیٹ میں ڈال لیے کہ آج تو صرف کباب ہی کھاؤں گی۔ یہ ہے اکثر شریک ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں۔ عقل اور سمجھ اللہ نے دی ہوئی ہے، گھر والے نے کیا چیز کس کے لیے کتنی رکھی ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ٹوکتا ہے تاکہ ہم قیامت کے دن اس برے عذاب برے معاملے سے بچ جائیں۔ پھر واپس کہا، یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو اس نے دراصل ایک آزمائش کی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا۔ پیچھے کیا تھا؟ اواب، یہاں کیا ہے؟ اناب۔ یہ بہت ہی خوبصورت ایک عمل ہے۔ آپ دیکھیے کہ دوسروں کے حالات سے اپنے لیے نصیحت لینا، اس کو ہدایت بیانی کہتے ہیں۔ ایک گائیڈنس وہ ہے جو آپ اور میں قرآن پڑھ کے لیتے ہیں، اور ہدایت کی 10 قسمیں میں نے پچھلے سالوں میں لکھائی تھی، آج صرف الہدی البیانی کو سمجھ لیں۔ کسی آپ کہیں جاتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے، ایک دن اگلا بندہ وہ آپ سے سوال کرتا ہے، چلے آپ کو نہیں سمجھ آئے گی میں اپنے اوپر لیتی ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کہنے میں بھی برا لگتا ہے، صبح میں نے اپنے ہسبینڈ سے جھگڑا کیا اور ذرا سی بدتمیزی کر دی، اللہ مجھے کبھی توفیق نہ دے، یہاں آ گئی، آپ کو تو نہیں پتا، پڑھانا شروع کر دیا، کوئسچن آنسر شروع ہو گئے۔ ایک پرچی آتی ہے اور اس پرچی پہ لکھا ہوا ہے، شوہر کے ساتھ جھگڑے کی صورت میں بدتمیزی کرنا کیسا ہوتا ہے؟ اب یہ سوال آپ کے لیے کہ میرے لیے؟ اس کو الہدل بیانی کہتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ القیسو مم ویدہ بغیری ہی، خلاصہ ہے بات کا، عقل مند وہ ہے جو دوسرے کے حالات سے خود نصیحت لے لے۔ تو زندگی میں دن رات ایسا ہوتا ہے، کسی کو کوئی بات کہہ کے آتے ہیں وہ آپ کے اپنے آگے آ جاتی ہے۔ یقین کریں یہ جو لفظ جہاں بول کے جاتی ہوں نا، یہ اگلے دن آنے تک باز گشت بن کے میرے اپنے دل دماغ پہ گونجتا ہے، فون میں، میسیجز میں، کئی جگہ مجھے اپنی کئی بھی باتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ آج یہ کہہ کے آئی ہوں نا، یہ ہوگا، آج یہ بڑی بات کر دی ہے نا، اب یہ آگے آئے گی۔ اللہ نے انسانوں کی اس دنیا میں ہمارے بہت سارے خاموش استاد رکھے ہیں۔ تو سلیمان، داؤد علیہ السلام نے اس موقع پہ اللہ کے آگے جھک کر سجدہ کیا، کیا پتہ چلا کہ اپنی کوئی غلطی دکھے، کوئی کمی بیشی ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں. فغفرنا لہو ذالک, اور ہم نے ان کا قصور معاف کر دیا. یقیناً ہمارے ہاں اس کے تقرب کا بہت اعلیٰ مقام اور بہتر انجام ہے. یعنی اللہ اپنے نبیوں کے واقعات جہاں لا کر ہمیں بتاتا ہے کہ ان میں انا نہیں ہوتی تھی, ایگو نہیں ہوتی تھی. کسی اور کے واقعے میں ابراہیم داؤد علیہ السلام کو اپنا حال دکھا. دوسری بات یہ کہ جس کے اس پہلے ہی 99 ہیں وہ ایک اور لینا چاہتا ہے, اس کو کہتے ہیں 9 اور 99 کا چکر, اور جس کے پاس ایک ہے کہتے ہیں اس سے بھی یہ لے لو. یہ بھی تو زیادتی, آج کے دور میں آپ یہی چیز یہاں دیکھ سکتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے حق سے کم لیں اور اپنی ذمہ داری سے زیادہ دیں. کمٹ لیس, اور یعنی کمٹمنٹ کم کی ہو لیکن آفر زیادہ کریں. انشاءاللہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا. ہم نے ان سے کہا ہے داؤد, ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا, پس آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کریں اور خواہش نفس کی پیروی نہ کریں. ہائی لائٹ کر لیں, ایگو, عزہ اور شقاق کا جو محرک ہوتا ہے نا, وہ خواہش ہوتی ہے. ورنہ کیا ہوگا, وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. اللہ ہمیں یوم الحساب کو بھولنے سے بچا دے. ہم نے اس زمین و آسمان کو اور اس دنیا کو جن کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا. تخلیق کائنات کا مقصد, پرپز آف لائف, یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا, اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں, غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. کیا پتہ چلا اس آیت سے کہ خواہش نفس کے پیچھے بھٹکنے والوں کو ہمیشہ ہی نقصان ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے نہیں. دوسری بات پتہ چلی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کی اور سجدہ کیا. آج ہماری شریعت میں صلاۃ و شکر تو کہیں نہیں ہے. ہاں, جب اللہ کے نبی کو کوئی خوشی کی خبر پہنچتی تو آپ شکر میں سجدہ کرتے تھے. تو آپ کو مجھے اگر کوئی گڈ نیوز ملے تو پھر آپ سجدے میں جا سکتے ہیں. ہاں, توبہ کی نماز کا ذکر موجود ہے. کبھی اپنا کوئی گناہ یاد آئے, وضو کریں, دو نفل پڑھیں, رو دھو کے معافی مانگ لیں کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے. آج تک بھی چھپایا ہوا ہے تو بعد میں بھی چھپا دے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل سے اس گناہ کا گلٹ اور اس کا بوجھ بھی ہٹے گا, کیونکہ ہم اپنے دلوں پر یہ بوجھ لے کر زیادہ دن نہیں چل سکتے. بعض دفعہ شیطان ہمیں ہماری پچھلی زندگی کے گناہ یاد کراتا ہے, کہتے تیری کیا بخشش ہونی ہے, تو نے کہا اچھا ہونا ہے, تو تو اتنا کر چکی وہ کر چکی. نہیں, جب چاہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے گا. اور داؤد چونکہ باپ تھے اچھے تھے تو اب اللہ نے اولاد بھی اچھی دی, اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا, بہترین بندہ, نعم العبد. جس کو اللہ بہترین کہے وہ کیسا ہوگا؟ کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. باپ کیا تھا؟ اباب. تو بیٹا کیا نکلا؟ انہو اباب. جیسا باپ ویسا بیٹا. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت ان کے سامنے خوب سدھے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے, تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یعنی آپ اپنی مال, اپنی گاڑی, اپنی چیزوں میں ہر اس چیز سے پیار کریں جو آپ کو اللہ کا قرب دیتی ہے. مثلا اس وقت کیا چیز ہے؟ اپنی گاڑی سے پیار کریں جو آپ کو یہاں تک لے آئی. تو آج جا کے آپ بھی سلیمان کی طرح گاڑی پہ ذرا ہاتھ پھیریے گا کہ تھینک یو مائی کار, تم نے مجھے یہاں پہنچا دیا. اور وہ گاڑی جو فجر کے لیے نکلے اور وہ گاڑی جو 5 وقت مسجد کے لیے نکلے, وہ اس گاڑی سے بہتر ہے جو ڈیش آپ آتی. باقی باتیں آپ خود ہی سمجھ جاتے ہیں. ہمیشہ اپنی چیزوں کو, اپنی نعمتوں کو دین کے لیے استعمال کریں تو وہ نعمت ہے. آپ انشاءاللہ آج کی دعا میں سے بھی آپ کو اس کا اشارہ ملے گا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ان نعمتوں کو استعمال کریں, ان کو خدا بنا کر پوجنے نہ لگ جائیں اور صرف انہی کو ادھر ادھر نہ لے کر بیٹھ جائیں, بلکہ ان کو استعمال کریں. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگے ان کی پنڈلیاں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. اور دیکھو سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر انہوں نے رجوع کیا اور کہا ہے میرے رب مجھے معاف کر دے, اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے، تو ہی اصل دینے والا ہے۔ تب ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتے تھے، اور شیاطین کو مسخر کر دیا۔ اپنی ایئر لائن تھی حضرت سلیمان کی، اپنی مرضی سے جہاز چلاتے، ہوا کو اوپر کرتے نیچے کرتے، اس کی اسپیڈ کم کرتے۔ ہے کوئی آج دنیا کی کوئی ایک طاقت بھی اتنی خود کفیل؟ تو انہوں نے یہ سب ترقیاں کب کی؟ جب اللہ کو چھوڑا، ناراض کے نہیں، ممالی اللہ عبد اللذی، جب مسلمان حکمران اللہ سے ڈرنے لگ جائیں۔ واللہ ہی آج بھی اللہ ایسے کام کر سکتا ہے، کل تو ہوائیں تھیں، آج تو اللہ آپ کو پوری دنیا میں گھومنے پھرنے کے مواقع دے دے۔ ہم نافرمانیاں کر کے اور اپنی توحید کو کمزور کر کے خود اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں، اور شیاطین کو مسخر کر دیا۔ ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو زنجیروں میں پابند تھے، ہم نے ان سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کو جتنی بھی نعمتیں ملی تھیں، قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ ان کی ایک خاص بات ہے۔ آپ کو مجھے کوئی کہہ دے ہاں جی کوئی حساب نہیں، پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ چیزیں تو جمع جو کریں گے، جو الٹ پلٹ بولیں گے، کسی بات کا حساب نہیں۔ زیادتیاں کرو، ظلم کرو، جو مرضی کرو، میرا لے ساری دنیا کا جینا دھوبر کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت دے دے۔ یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہترین جام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا، ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، ہم نے اسے اور اس کے اہل عیال واپس کر دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ اور ہم نے ان سے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے لو۔ مٹھا کس کو کہتے ہیں؟ جھاڑو، یعنی ایک مٹھی میں جو تنکے آئے، اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، وہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ کیا خوبی آ رہی ہے ہر نبی کی در؟ اواب۔ تو دعا کر اللہ میں اواب بنائے، اور اواب ہی ہے جو یہ کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي۔ فوکس، جھکا ہوا، اندر سے ٹوٹا ہوا شخص۔ حضرت ایوب کا قصہ آپ نے یہاں بھی پڑھا، پیچھے بھی پڑھا تھا۔ 18 برس تک کہتے ہیں کہ بیمار رہے، قریب والے سب چھوڑ گئے۔ جب ہم کھاتے پیتے ہیں اور جوان ہوتے ہیں نا، سب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، لیکن جب جسم بھی کام کرنا چھوڑ دے تو دوسرے بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور جو کھلیان تھے، گیت تھے، وہ سب ان کے ختم ہو گئے۔ لیکن صابر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا؟ وہ سب کچھ دے دیا جو پہلے تھا، اس سے بھی زیادہ دیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے کھلیان میں گندم اگتی تھی، اور اوپر سے ایک بادل آیا اور اس میں سے سونے کی ٹڈیاں برسی، چاندی کی پتریاں ان کے اوپر اللہ نے برسائیں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ ایسے ہی بدلے دیتا ہے، اور اللہ ہمیں صابر بنا دے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے۔ یہ نوٹ کریں، قوت عمل سب سے بڑی قوت ہے۔ بیکار لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ آپ خود دیکھیں، آپ گھر میں فارغ بیٹھے ہیں، بیکار ہیں، ایسے سستی سستی سستی، اتنے میں کوئی آ جائے یا آپ کو کوئی چیلنج درپیش ہو جائے تو وہ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں۔ آج کل مغرب چلے لیٹ ہو رہی ہے، لیکن رمضان میں دیکھیے افطاری تک سارا کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ دعوتیں پکائیں تو 10 بجے تک کھانا ہی نہیں ریڈی ہوتا۔ قوت عمل سے طاقت ملتی ہے، بیکار لوگ اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اپنی زندگی سے سستی کو نکالیں، ڈیلی ڈیلی نکال دیں، میں نہیں کر سکتی، میرے سے نہیں ہوتا۔ اب یہ آتی کیسے، یہ آگے پتہ چل رہا ہے۔ ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ جو چیز مجھے آپ کو اس زندگی سے فائدہ اٹھانے پہ مائل کرے گی وہ آخرت کی یاد۔ کیسے؟ لکھئے، اپنے ہر دن کو یہ سوچ کر گزاریں کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اگر آپ کو مجھے پتہ تو چل جائے کہ یہ آج کے جو چند گھنٹے رہ گئے ہیں بس یہ آخری گھنٹے ہیں، کیسے گزاریں گے؟ پتہ نہیں کیا کیا رکا ہوگا۔ اب دیکھیں کچھ لوگ آخری وقت پہ کام کرتے ہیں، لاسٹ مومنٹ، فلائٹ پہ جانے سے پہلے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم بھی اپنی موت کا اس طرح ہی کام انتظار کر رہے ہیں؟ ملک الموت کو دیکھ کر پیکنگ شروع کریں گے؟ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں ہے. اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. آج تو ایسے لگ رہا ہے پورا پارا نبیوں کی تعریفوں میں بھرا ہوا ہے. آگے بھی آتے ہیں پارے، لیکن آج تو ایک عجیب ہی رنگ ہے. کیا پتہ چلا کہ نبوت کا مقصد فکر آخرت کا لگ جانا، لوگوں کی آخرت کی فکر اور اپنی آخرت کا بہتر ہونا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باغے کچھ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. اپنے آپ کو تصور کی آنکھ سے وہاں دیکھتے ہوئے نو سنیے گا. فرمایا، یہ ایک ذکر ہے، اب سنو، متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں. لفظ ہمیشہ پہ غور کریں، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، ان کے پاس شرمیلی ہمسن یعنی ہم عمر بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیز ہے جنہیں حساب کے دن ادا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا. یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم میں، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور بہت ہی بری قیام گاہ. کون سا انجام بہتر ہے، کس کا حال اچھا ہے، کس کا برا ہے؟ آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں. یہاں جنت کے دروازوں کی بات ہے. دروازے کا کھلنا کسی کے وارم ویلکم کی دلیل ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. دنیا میں متقی نیکیاں کر کر کے دروازے کھلواتا گیا. لکھیں ایک جملہ، دنیا میں نیکیوں کے دروازوں کا کھلنا جنت کے دروازوں کے کھلنے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچائیں ہم سب، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. جو نیکی آج سامنے ہے اس کو ڈیلے نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 70,000 لوگ اس طرح داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوں گے اور ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اللہ آپ کو مجھے اس میں داخل کر دے. فرمایا جنت کے دروازے روز پیر اور ہر پیر اور جمعرات کو کھلتے ہیں، سب کو اس میں داخل کر دیا جاتا ہے سوائے شرک کرنے والوں کے. وما لی الا اعبد الذی فطرنی. تو شرک کی ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی اپنے زندگی سے نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے برے انجام سے بچائے. اگلی آیتوں میں کڑوا سا ٹیسٹ ہے. فرمایا، ہاذا فلیذوقوا حمیم وغساق. یہ ہے ان کے لیے بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اس قسم کی دوسری تلخیوں کا. دنیا میں کتنے ٹیسٹ کانشس تھے، قطرہ سا ٹیسٹ چینج ہوا پٹک کے پھینک دو، تھرو اٹ، ٹریش کر دو، وہاں کج لہو پینا پڑے گا. کہیں ہاٹ ڈرنکس کے عادی، کہیں کولڈ ڈرنکس کے عادی، وہاں کیا پینے کو مل رہا ہے؟ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروؤں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں. یعنی آپ کو دیکھ کر بالکل خوشی نہیں ہوئی، آپ کو آتا دیکھ کر بالکل کوئی ویلکم نہیں. یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں، وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم، کوئی ویلکم تمہارے لیے نہیں. تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار. دیکھیں دنیا کی گہری دوستیاں وہاں جا کے کس نفرت میں بدل رہی ہیں. تو لہٰذا آج اپنی دوستیوں کے قبلے ٹھیک کر لیں. پھر وہ کہیں گے، ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. اور آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے. کن کو بلا؟ مولوی. ہم نے تو یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا. مذاق بناتے ہیں نا لوگ اس لفظ کا، کہیں گے وہ کدھر گئے، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں. بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں. استغفراللہ. اے نبی ان سے کہو، میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ، جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمان و زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست طور درگزر کرنے والا. ان سے کہو، یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو. آج دنیا میں لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ نہیں ہونا، वो फिरते हैं, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। तो याद रखिए ये बहुत बड़ी बात है, ऊपर से जलने का अज़ाब और अंदर से दिल जल रहा है हसरत अफसोस के साथ। दुनिया में बाज़ दफ़ा हम दूसरों की बुराइयों को बर्दाश्त कर लेते हैं कि नहीं ताल्लुक ना ख़राब हो, वहाँ उनको जलते देखना कैसा लगेगा। तो दुआ कीजिए कि हम अपने प्यारों की हिदायत का जरिया बन जाएं। आदम और इबलीस के किस्से की तरफ आयतें चलती हैं। इनसे कहो मुझे इस वक्त की कोई खबर ना थी जब मलए आला में झगड़ा हो रहा था, मुझको तो वही के जरिए से ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि मैं खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूँ। जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं मट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ, फिर जब मैं इसे पूरी तरह बना दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम इसके आगे सजदे में गिर जाओ। फरिश्तों का कोई अना का इशू नहीं था, इज्जा और शिकाक नहीं था, फौरन झुक गए। इस हुक्म के मुताबिक फरिश्ते सब के सब सजदे में गिर गए, मगर इबलीस ने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो काफिरों में से हो गया। रब ने फरमाया इबलीस तुझे क्या चीज इसको सजदा करने से रोकने वाली हुई जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, तू बड़ा बन रहा है या तू है ही कुछ ऊंचे दर्जे की हस्तियों में से। याद रखिए जो अन्ना का शिकार होता है वो बड़ा होता नहीं है, खुद को बड़ा समझता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पहाड़ है उसके ऊपर जाके कोई खड़ा हो और दूसरे लोग उसको नीचे छोटे छोटे दिखेंगे ना, तो वो ये समझे मैं इतना ऊंचा हूं और दूसरे बिल्कुल कीड़े मकोड़े हैं, हालांकि दूसरों को वो दूर से क्या दिख रहा है तो वो बोना हाँ पहाड़ पे चढ़ गया। तो तकब्बुर और खुद पसंद शख्स दूसरों की नजरों में कभी भी बड़ा नहीं होता, ये अलग बात है कि उसको दूसरे छोटे लगते हैं। आज देखिए ये बड़ाई का एहसास हमारे अंदर कहाँ कहाँ है। जरा सा कोई ऐसा कपड़ा आ जाए मार्केट में कि जो आम हो जाए और कोई फ्रेंड मेड्स पहन ले और आपका भी हो, एक सिस्टर ने कहा कि मैं तो वो कपड़ा ही नहीं पहनती जो मेरी मासी पहन के आ जाती है, कोई दूसरा उसको दे दे मैं तो उतार के फेंक देती हूँ कि मैंने नहीं ये पहनना। अब देखिए आपके मेरे पास बड़े बनने का कोई मौका नहीं है, बड़ाई एक ही चीज में, आगे 26वें पारे में पढ़ेंगे इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तकवा में बढ़ते जाएं अल्लाह ताला बाकी चीजों से आपको बेन्यास करेगा इंशाल्लाह। रब ने फरमाया इबलीस नहीं, इसने जवाब दिया मैं इससे बेहतर हूं, आपने मुझको आग से पैदा किया और इसको मट्टी से। यहां फिर देखिए ना लॉजिक्स दे रहा है, दलीलें पेश कर रहा है अपनी गुनाहों अपनी नाफरमानी की। फरमाया अच्छा तू यहां से निकल जा, तू मरतूत और तेरे ऊपर यौमुल जजा तक मेरी लानत है। वो बोला है मेरे रब ये बात है तो फिर इस वक्त तक के लिए मुझे मोहलत दे दे। किस बात की मोहलत दे मांग रहा है, तौबा की नहीं और गुनाहों का बोझ उठाने की कि मैं अब दूसरों को भी बहका लूं। ये है ना प्रस लोगों का हाल, जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे उस वक्त तक की मोहलत दे दो। फरमाया अच्छा तुझे उस रोज तक की मोहलत है जिसका वक्त तुझे मुझे मालूम है। इसने कहा तेरी इज्जत की कसम है इन सब लोगों को बहका कर रहूंगा सिवाय तेरे इन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिया। शैतान का वार जिस बंदे पे नहीं चलता वो मुखलस है, जैसे स्टील को या धात को आग नहीं लगती ना आमतौर पर, कपड़े को लग जाती है लकड़ी को लग जाती है, इस तरह इखलास को आग नहीं लगती, फायर प्रूफ है इखलास, अल्लाह आपको मुझे अता कर दे। फरमाए तू तो हक ये है और मैं हक ही कहा करता हूं कि मैं जहन्नुम को तुझसे और इन सब लोगों से भर दूंगा जो इन इंसानों में से तेरी पैरवी करेंगे। कौन रोक सकता अल्लाह को ये कहने से, उसकी मखलूक उसकी आग उसके बंदे उसके जिन। असल बात यह है कि अल्लाह ताला यहाँ मुतकब्बिरीन को खबर दे रहा है कि अगर बड़ा बनोगे तो याद रखना वहां पकड़े जाओगे। और याद रखिए सबसे बड़ा बुरापन यानी सबसे बुरी बड़ाई इल्म वालों की बड़ाई है, दीनदारों का नुमाया होना भी जो है सो है, दूसरों से आला होना, दूसरों के साथ तकाबुल करना, अपने गुनगाना, ये सारे कामों को मट्टी में मिला देगा। एक कौल है कहते हैं कि आलिम का शैतान भी आलिम ही होता है। सबसे जहरीला तकब्बुर दीन वाले का तकब्बुर है और दूसरों को तो कुछ हम समझते नहीं, आवाज में इतनी रौनत इतनी तलखी, ये भी हराम ये भी गलत ये भी जहन्नमी ये भी काफिर ये भी मुनाफिक। तो अपनी जुबान को हत्तुल वसा नरम रखें जब नए लोगों से बात करें, आपको क्या पता वो कितनी अना पे चोटें खा के आपके पास पहुंचे हैं, उन गरीबों को तो अभी सीधी तरह से नमाज नहीं पढ़नी आती, आप उनको बड़ी बड़ी बातों पे काउल जाते हैं, तो यहाँ आप तबलीग की चंद बातें आखिरी आयतें लेकिन बड़ी अमल की बातें हैं। ए नबी इनसे कह दो, मैं इस पर तबलीग इस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता और न मैं बनावटी लोगों में से हूँ। ये तो एक नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए और थोड़ी मुद्दत ही गुजरेगी कि तुम्हें इसका हाल मालूम हो जाएगा। क्या पता चला, दीन के काम में अजर की उम्मीद नहीं रखनी। देखिए अजर किस सूरत में है, बाज दफा तारीफ भी एक अजर बन जाती है, शोहरत भी एक अजर बन जाती है, मुराद मिले हमारे लिए क्या डिस्काउंट्स हैं ये भी एक एक कह लीजिए कि रास्ते की रुकावट बनती है। और दूसरी बात बनावटी नहीं, तकल्लुफ में है तकलीफ ज्यादा। दीन के काम में तकल्लुफ और तकलीफों को सहना, ये याद रखिए दूसरे लोगों को भी मुश्किल में डालना है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इन सारी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। तिलावत सुनते हैं आखिरी आयतों की।
قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
हम सबको दुनिया में ही समझ दे दे। अगली सूरत जुमर है, बहुत ही खूबसूरत सूरत है, अधूरे जुमले आधी बात करके छोड़ दो, पूरी सूरत में आपको ये अंदाज मिलेगा। शुरू आज हो रही है, पूरी कल होगी। गिरोहों की बात है, कयामत के दिन हर बंदा अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ चलेगा, यही सूरत में। और खास तौर पर सूरत में शिर्क फित दुआ, दुआ के मामले में जो लोगों से शिर्क होता है उसका बहुत इशारा है। आइए पढ़ते हैं, बड़ी प्यारी आयात इसमें आने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इस किताब का नजूल अल्लाह जबरदस्त और दाना की तरफ से है। ए नबी ये किताब हमने आपकी तरफ बरहक नाजिल की है। आप भी इसकी गवाही देते हैं कि ये सच्ची बात है। लिहाजा तुम अल्लाह ही की बंदगी करो दीन को इसी के लिए खालिस करते हुए। खबरदार दीन खालिस अल्लाह का हक है। क्या कहना चाहिए इस आयत को सुनकर, वमाली अलाबुदुल्लज़ी फतरनी। खालिस तौहीद तो यह है कि बंदा अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करे। रहे वो लोग जिन्होंने इसके सिवा दूसरे सरपरस बना रखे हैं और अपने इस फेल की तौजीह या वजह ये करते हैं कि हम तो इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह तक हमारी रसाई करा दें। अल्लाह यकीनन इनके दरमियान इन तमाम बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठा और मुनकरे हक हो। एक ऐसे शिर्क की इसमें बात आई और वो क्या, हमारी इनके आगे इनकी रब के आगे। ये जो बीच के सहारे हैं ना, इनको काट दीजिए। पीछे एक जुमला बोला था याद आ रहा, गैर अल्लाह के सहारे मकड़ी के जाले, यहां भी यही बात है। जब हम दूसरों को अपने और अल्लाह के बीच में रखते हैं ना, तो कभी हमें इतनी करीब का तो यकीन आ ही नहीं सकता कि वो हमारे कितना करीब है। और अब इस सूरत में आप देखेंगे झूठ का जिक्र बार बार आएगा। सबसे बड़ा झूठ ही ये है कि ये कह दिया जाए कि अल्लाह के माँ सिवा से मांगो। अगर अल्लाह किसी को बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता चुन लेता। पाक है वो इससे कि कोई इसका बेटा हो। वो अल्लाह है और अकेला और सब पर गालिब। इसने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया, वही दिन पर रात और रात पर दिन को लपेटता है। इसी ने सूरज और चांद को इस तरह मुसख्खर कर रखा है कि हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चले जा रहा है। जान रखो वो जबरदस्त और दरगुजर करने वाला है। इसने तुमको एक जान से पैदा कर दिया, फिर वही है जिसने इस जान से इसका जोड़ा बनाया, और इसी ने तुम्हारे लिए मवेशियों में से 8 नर और मादा पैदा किए। कहां पढ़े थे, सूरत अलनाम में और मायदा में भी। वो तुम्हारी माओ के पेटों में तीन तीन तारीख पर्दों के अंदर तुम्हें एक शक्ल के बाद एक शक्ल देता जा रहा था। माँ के पेट में कितने अंधेरे हैं, तीन अंधेरे हैं, पेट का, झिल्ली का, रहम का। उसके अंदर ये तस्वीरें बन के निकलती हैं। कभी किसी को अंधेरे में कहें जाओ एक तस्वीर बनाओ, तस्वीर तो बनानी नहीं है किसी इंसान की, लेकिन आप देखिए जब लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं तो कितने केयरफुल होते हैं, एंगल सामने सामने मॉडल रखा, फिर भी नाक टेढ़ी ही होती है। अल्लाह ने अंधेरों में प्यारी शक्लें बनाई और फिर वो बाहर आता है तो वो बोलता हंसता रोता धोता बच्चा बन जाता है। यही अल्लाह जिसके ये काम है, तुम्हारा रब है, बादशाह ही उसी की है, कोई माबूद उसके सिवा नहीं, फिर तुम किधर से फिर आए जा रहे हो। इस पे बोले जुमला कैसे फिरता है बंदा जब वमाली अलाबुदुल्लज़ी फतरनी, रब का हुक्म छोड़ के बंदों की तरफ जाता है। तो अल्लाह ताला धमकी भी दे रहे हैं, बड़ी वॉन करने वाली आयत है, इन तकफुरु फइन्नल्लाह गनीयुन अनकुम, अगर तुम कुफर करो तो अल्लाह बेनियाज है, लेकिन वो अपने बंदों के लिए कुफर को पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करो तो वो इसे तुम्हारे लिए पसंद करता है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा, आखिरकार तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो, वो तो दिलों का हाल तक जानता है। तो तुम अल्लाह की जरूरत नहीं हो, अल्लाह तुम्हारी जरूरत है। ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमारे दिलों को सीधा रख दे। आप देखिए कि जब अल्लाह कोई पसंद करे चीज तो वो अच्छी होगी या जो हम पसंद करेंगे। तो अल्लाह ने क्या पसंद किया, शुक्र को। तो कभी शिकवे ना करें, अपनी शक्ल का शिकवा, मैं तो बेवकूफ हूं, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसी हूं, मैं तो पागल हूं। शुक्र कीजिए अल्लाह ने जैसा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान पर जब कोई आफत आती है तो वह अल्लाह की तरफ रजू करता है, फिर इसे पुकारता है, फिर जब इसका रब इसे अपनी नेमत से नवाजता है, फिर जब इसका रब इसे अपनी नेमत से नवाज देता है तो वो इस मुसीबत को भूल जाता है जिस पर वो पहले पुकार रहा था, और दूसरों को अल्लाह का हमसर ठहराता है ताकि इसकी राह से गुमराह कर दे। फिर सारे मसले तय हो जाते हैं, सारी वजीफों की किताबें इधर उधर खो जाती हैं, क्योंकि मसला हल हो गया, शादी हो गई दोबारा, अब घर में बस गए, अब दूसरे घर में बसते बसते कई दफा रब से दूर हो जाते हैं। अल्लाह हमें खुशियों में भी रब को याद रखने वाला बनाए, जैसे गमों में याद करते हैं। ए नबी इनसे कहो तुम्हारे थोड़े दिन अपने कुफर से लुत्फ उठा ले, यकीनन तो दोजख में जाने वाला है, क्या इस शख्स की रविश या तरीका बेहतर है या उस शख्स की जो मती फरमान है, रात की घड़ियों में खड़ा रहता है और सजदे करता है, आखरत से डरता है और अपने रब की रहमत से उम्मीद लगाता है। एक एक खूबी पे अपना मुहासबा कर ले, रात की घड़ियों में खड़ी होती हूँ, सजदे करती हूँ, आजकल तो कर ही रहे हैं, आने वाले दिनों में लग पता जाएगा, आखरत से डरती हूँ, रब की रहमत की उम्मीद है। इनसे पूछो क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों कभी यकसां हो सकते हैं, हाईलाइट कीजिएगा, हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। याद रखिए आलिम और जाहिल बराबर नहीं है, नया नया इल्म बहुत अकड़ पैदा करता है, इल्म जितना पुराना होता है उतना आजजी लाता है, इल्म इस्तेमाल से पुराना होता है धीमा हो जाता है, जैसे नई कॉपी खोले तो कड़कड़ बड़ी करती है, नया कपड़ा पहने तो कैसे चिरचिर की आवाजें आती हैं, लेकिन नई कॉपी खाली और पुरानी कॉपी जिसमें आपने कई सालों से लिखा हुआ है कौन सी कीमती है, पुरानी। तो इल्म का असर आपके अंदर आजजी और नरमी की सूरत में आना चाहिए। खूबसूरती तो बड़ी होती है, नए इल्म में तो कड़ी बड़ी, सारों को हम काफिर कह के आ जाते हैं, फतवे देकर आते हैं, तुम भी काफिर तुम भी। फिर याद रखिए नया कपड़ा नया इल्म अजनबी लगता है, हर बात सुन के बंदा हैरान ही रहता है, और मैं अक्सर कहती हूँ पहली दफा जो दौरे कुरान करते हैं उनका आधा वक्त तो हैरत में गुजर जाता है, इज इट ट्रू, मुंह खुले का खुला रह जाता है, ये क्या ये क्या ये क्या, अच्छा ये इतनी बातें इकट्ठी धड़ 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 दिमाग पे आती हैं, क्या करें, इसको जज्ब करें आहिस्ता और इल्म हासिल करें, फिर इल्म पुराना होगा और हम मिजाज होगा, जैसे पुराने कपड़े पहनकर बहुत सुकून मिलता है ना, फिर बेतकल्फी होती है, फिर ठहराव आता है, फिर हिकमत आती है, और फिर इंसान उस इल्म के साथ इतना यूज्ड हो जाता है कि वो कहता है अल्लाह कब्र की दीवारों तक मुझे इल्म के साथ जुड़े रखना। ए नबी कहो कि मेरे बंदो जो ईमान लाए हो अपने रब से डरो, अल्लाह हमें अपना डर दे दे। जिन लोगों ने इस दुनिया में नेक रवैया अख्तियार किया इनके लिए भलाई है और अल्लाह की जमीन वसी है, सब्र करने वालों को तो इनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। اللہ تعالیٰ اپنے راستے کے صبر کی بات کرتے ہیں. اے نبی ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں. تو دل سے کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے, خالص کر دے. اور مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں, پہلا مرحلہ اپنے لیے. دیکھیے جہاز میں بیٹھتے ہیں تو اعلان کیا کرتے ہیں وہ لوگ, دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے اپنی کریں. اگر آکسیجن ماسک گرے تو پہلے اپنا لگا لیں. اسی طرح پہلے خود کو نیک بنانا ہے. میری اپنی نیکی میں کمی ہے جو دوسرے پہ میرے آگے منہ کھول کے بولتے ہیں. جب میں اپنے عمل کو حد الوسع پورا کروں گی انشاءاللہ دوسرے کی بات سننے کا موقع نہیں آئے گا. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. آپ بھی مجھے اجازت دیں ایک بار پھر کہنے کی, ممالی العبد الذی فطرنی. یہی بات ادھر ہے, میں رب کی نافرمانی کروں, اس کی جس نے مجھے پیدا کیا, ایک بہت بڑے دن کا عذاب آئے گا. یہ سوچ لے کر انشاءاللہ یہاں سے جانا ہے آپ نے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا, تم اس کے سوا جس جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. کہو اصل دیوالیے بینک کرپٹ تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو, سوچے اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. کتنی پکڑ ہے اولاد والوں کی, کتنی پکڑ ہے رشتے والوں کی. خود تو ڈوبے دوسروں کو بھی ڈبو دیا. خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالیہ ہے, ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. کیا کریں اس کا ترجمہ مجھے بتائیں, اس میں ہے کسی کا اضافہ یا کمی یا بیشی؟ یہ آیتیں ہیں جو بندے کا دل توڑ کے رکھ دیتی ہیں. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. پس میرے بندو, دیکھیں پیار, میرے بندو ہو تو میرے ہی, کام غلط کرتے ہو یہ الگ بات ہے, میرے غضب سے بچو. یعنی اللہ بچا رہے, مت مجھے موقع نہ دو کہ میں تم پہ غضب کروں. بخلاف ان کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا. اللہ ہمیں اباب بنا دے, دوسروں سے بے نیاز کر دے. ان کے لیے خوشخبری ہے, پس سے نبی بشارت دے تو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں. الحمدللہ آپ بھی غور سے سن رہے ہیں, اللہ آپ کو بھی یہ بشارتیں دلوا دے اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ عمل کی باتوں کو اپنے لیے لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے. اللہ ہم سب کو بھی ہدایت بخش دے, اور یہی دانش مند ہیں. اللہ ہمیں بھی عقل مند کر دے. اے نبی اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چشماں ہو چکا ہو؟ کہتے ہیں کہ جس کے آرڈر ہی آگے جیل سے پکڑے جانے کے, اب اس کو کون بچائے گا؟ تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو. البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلندی مارتے ہیں, منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں, پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا, پھر اس پانی کے ذریعے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں, پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں, پھر تم دیکھتے وہ زرد پڑ گئیں, پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے. یہی میری آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے, اور بڑھاپا تو نرا بھوسا ہی بنانے والا حال ہوتا ہے, کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. در حقیقت اس میں ایک سبق عقل رکھنے والوں کے لیے. اب اگلی آیت جو ہے یہ آیت تدبر ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل پڑا, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق ہی نہ لیا؟ مجھے یہ آیت ایسے لگی, کیا وہ شخص جو اتنا سن کر اپنے آپ کو بدل لے وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے کوئی بالکل نہیں بدلا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے. شعور سے کہیے اللہ میں ان لوگوں میں نہ کرنا, کیونکہ جب مٹی سوکھی ہوتی ہے تو نرم ہوتی ہے, ایک دفعہ گیلی ہو کے سوکھی ہو تو وہ جم جاتی ہے. یہ قرآن یاد رکھے کچھ لوگوں کو اور بھی سخت کرتا ہے اور خود پسند بناتا ہے, کہتے ایک دفعہ اور پڑھ لیا قرآن اور پڑھا لیا ہے, وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نزل احسن الکتاب احسن الحدیث کتاب, اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے, کہتے ہیں اس کو بہترین. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنے دل کو چیک کریں. اسی لیے یہ آیت تدبر ہے. کیا قرآن کی محفل میں میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ رونگٹے کس کو کہتے ہیں؟ یہ کیا بولتے ہیں اس کو آپ لوگ؟ جی, خوف کی وجہ سے, بہت سردی کی وجہ سے, دہشت کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں. کتنی دفعہ ان 23 پاروں کو پڑھنے کے دوران میرے رونگٹے کھڑے ہوئے. سورۃ انفال سے آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں. اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا زَادَتْهُمْ اِيمَانًا. اللہ ہمیں خشیت دے دے, ہم اس محفل میں کبھی بے خوف ہو کے نہ بیٹھیں. جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے. اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے, اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں. اب اس شخص کی بدحالی کا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا. ایسے لگتا ہے اوون کا منہ کھلا اور آگے سے آگ کی ایک لپٹ منہ پہ پڑ گئی. ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا, چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے. آخر ان کو عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا, اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں. اللہ ہمیں بھی ہوش میں لیا. ایسا قرآن جو عربی میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں, تاکہ یہ برے انجام سے بچے. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے بد اخلاق آقا شریک ہیں. ایسی ماسی جس کی 4-6 مالکنیں اور ساری ایک سے ایک بد اخلاق, جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں, اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا کہتا ہے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي. سب کا بننے کی بجائے ایک کے بن جائیں, اور سب کو اپنا بنانے کی بجائے اس سے ایک کو اپنا بنا لیں, وہ سب کو آپ کا بنا دے گا انشاءاللہ. کہیں دونوں کا حل یکساں ہے؟ الحمدللہ, مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں. اے نبی, آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ بات. آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے. پتہ نہیں میرا مقدمہ وہاں کیسا کھلے گا, آپ اپنا سوچئے. تو یہ تھا 23واں پارہ. مجھے تو اتنی شدت سے کبھی آج تک احساس ہی نہیں ہوا تھا اس پارے کے دوران کہ وما لی لا اعبد الذی. پورے پارے نے اواب بننا سکھایا, اور اواب کون ہوتا ہے؟ سب سے کٹ کے رب کا. کوئی خوش ہے تو اس کی خوشی, کوئی ناراض ہے تو اس کی ناراضگی, مجھے کسی کی کو پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ وہ آپ کے میرے لیے اس کو آسان کر دے. آج کی چیک لسٹ کو ایک نظر گو تھرو کر لیں. سب چیزیں ہو گئی ہیں الحمدللہ. صرف ایک حدیث چھوٹی سی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. چند سیکنڈ آپ کے صبر کے ہیں. یہ آیتیں تو وہی ہیں جو اینڈ پہ آئی ہیں. اس کے اوپر ایک حدیث یا ایک خلاصہ لے کے شرح صدر کیسے ہوتا ہے, کیا علامتیں شرح صدر کی, یا کس کا سینہ کھلتا ہے. اب دل چاہ رہا ہے نا کہ سینے کھلے, تو سب سے پہلی چیز توحید, اللہ کو ایک ماننے سے سینہ کھلتا ہے. دوسری چیز علم, علم سینوں کو کھولتا ہے. تیسری چیز ذکر الہی, ذکر جتنا آپ کی زندگی میں آئے گا اتنا اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھولے گا. چوتھی چیز اچھے اخلاق, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. پانچویں چیز کینے اور بغض کو دل سے نکال دیں, دل کھل جائیں گے. اور اگلی چیز اپنی زندگی میں احسن درجے پہ نیکیوں کو ڈال دیجئے, اللہ شرح صدر کر دے گا, اللہ میرا اور آپ کا بھی کر دے. پھر اس کے بعد آج کی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ہی آنے والے دن کی پو پھٹتی ہے صبح ارلی مارننگ, تو وہ دن آواز لگاتا ہے, اے ابن آدم میں اللہ کی نئی تخلیق ہوں اور تمہارے اعمال کا گواہ. یعنی آج کے دن جو کچھ تم کرو گے کل وہاں جا کے گواہی دوں گا. اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ زیادہ راہ لے سکتے ہو لے لو, میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا. تو ٹوڈے الان, آج کا دن ہے جس پہ کچھ کرنا ہے. آج کی دعا بھی ہماری قلب سلیم اور زندگی میں اللہ کی نعمتوں کے قدردان بننے پہ. اللہم انی اسلک السبات فی الامری والعزیمت علی رشدی واسلک موجبات رحمتکا وعزائم مغفرتکا واسلک شکر نعمتکا وخسن عبادتکا واسلک قلبا سلیما. پڑھا آج آپ نے اسی کی دعا کریں. ولسانا صادقا وَاسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ عطا کرے. اس کو انشاءاللہ ان کے ساتھ دہرائیے گا دعاؤں کے سیشن میں کل، بے شک اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا. بہت ہی پیاری بات ہے کہ اللہ مجھے کاموں پہ ثبات دے دے، یعنی میں جو کام شروع کروں اس کو پورا کروں، ادھورے نہ چھوڑوں، اور مجھے رشد پہ عزم دے دے. اگر میں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا تو میں ٹلوں نہ، اور اپنی رحمت تیری رحمتوں کو واجب کرنے والی چیزوں کا سوال کرتی ہوں، اور ایسے عزائم جو تیری مغفرت کو لے آئیں، اور نعمتوں کا شکر، اور اچھے طریقے سے عبادت کا کرنا، اور قلب سلیم مانگتا ہوں، سچی زبان مانگتا ہوں، اور ہر وہ خیر جس کو میں جانتا ہوں، اور ہر وہ شر جس کو میں جانتا ہوں، اور میں تجھ سے اس کی بھی معافی مانگتا ہوں جو تو جانتا ہے، اور تو غیب دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، جو تو غیبوں کو جاننے والا ہے. ان دعاؤں سے بھی انشاءاللہ دل کھلیں گے. پھر اس کے بعد وقت کا بہترین استعمال ہم دیکھ چکے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، تو آج کو ابھی کو استعمال کریں. یہ گھڑی اپنے گھر میں جا کے لگا لیں، آپ اس میں سے یہ تصویر نکالیں، پرنٹ آؤٹ کریں اور اپنے گھر میں جگہ جگہ لگا دیں. کریں گے؟ کتنے لوگ یہ کام کریں گے؟ کیا لکھا ہوا اس پہ؟ پڑھیے بارہ بار. بس یہ ہے آپ کی میرا اس دن کو پروڈکٹیو بنانے کا نسخہ. اور وقت ضائع کرنے والا کام تساہل، ٹال مٹول، ڈیلے کرنا. آج سے انشاءاللہ زندگی سے تساہل کو نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اور اسماعیل علیہ السلام قابل تقلید تھے، اللہ تعالیٰ عمل والا بنا دے. سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و برکاتہ. جی الحمدللہ بہت ہی خوبصورت پارہ، اور آخری 10 پارے جس طرح آخری عشرہ ایمان اور تقوی کے قریب کرنے والا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہمیں خالص کر رہے ہیں. تو آج ہم نے اپنے لیے کیا ٹپ لی کہ آج سے اور ابھی سے ہم نے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے، تقویٰ والا کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے احسان، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا جو شرح صدر ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے کل کی پارے سے ذکر الہی کو اپنے لیے ضرور زبان پہ اس کو جاری کیا ہوگا، اور تراوی میں اور یہ ساری چیزیں فائدہ دے رہی ہیں نا الحمدللہ. جی تقوی اینڈ نو ٹائم ویسٹ، اور سستی بالکل نہیں کرنی. جی یہ انشاءاللہ تعالی ہم سازا جی سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو ان کا تاک رات کا سیشن ہوگا وہ آن لائن بھی ہم انشاءاللہ تعالی اس کو لیں گے. مجھے پورا یقین ہے اپنا ہر کام وقت پہ کرنا ہے، اور پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نے جتنا پیغمبروں کا ذکر، کتنا زیادہ ذکر آ رہا ہے، اور اس میں ہمیں ہمارے لیے یہی نصیحت ہے نا کہ اپنی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہوئے عمل کی کوشش کرنی ہے. جی اس کو آپ اپنے اپنے ٹائم سے کنورٹ کر لیں، جہاں جہاں آپ لوگ ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس ٹائم پہ آپ لوگ آن لائن کلاس کو لے سکیں گے. تو آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ آخری عشرہ ہم بہترین طریقے سے گزار سکیں، اور اس کو بھرپور استعمال کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز سے خیر پہنچانی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے اس کے ساتھ سے. ہمارا ٹائم ہوگا جی 5 آور کر لیں آپ لوگ اس کو پیچھے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایسٹرن ٹائم میں آ جائے گا، 8 ہوگا میرے خیال میں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو سن سکیں گے. 6 آور کریں جی ایسٹرن ٹائم سے، تو اس وقت پہ پھر ہم اس کو 7 PM پہ. جی جزاک اللہ خیر فرحانہ. 7 PM ایسٹرن ٹائم پہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو پھر لائیو بھی وہاں سے سن سکیں گے, اور اس میں بہت ساری ہمارے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ عمل کی باتیں ہوں گی. یہ آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا سرپرائز ہوگا. ٹھیک ہے, پھر آج کی کلاس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جی میں یہ ماریا عمر کا پڑھنے لگی تھی, ریپلے ہوتا ہے اس روم میں, سو ایڈمن نیز ٹو چیک. جی ان شاء اللہ تعالیٰ 4 o'clock پہ شروع ہوتا ہے جو ایسٹرن ٹائم پہ ریپلے, تو آپ لوگ اس کو پھر دیکھیے گا. ہم سب ان شاء اللہ تعالیٰ آن لائن رہیں گے, تو ہمیں پھر پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہم اس کو لیتے ہیں, دوسرے روم میں لیتے ہیں یا اسی روم میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.